ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यह ओम शांति जो शब्द है, इसके अंदर बहुत ही डीप हार्टियस गुड विशेष है। ओम तीन सिलेबल्स से बना हुआ, अ उ और म, जिसमें आचरण, उच्चारण और मनसा, ये शुभ भावना हम एक दूसरे को देते हैं, आपके मन वचन कर्म में शांति हो। तो हम सभी की आदरणीय आशा दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हम दीदी का मंच पर स्वागत करते हैं। और आज राजनीतिज्ञों के सम्मेलन का खुला सत्र दो है, जिसका विषय आत्मिक मूल्यों द्वारा सशक्त नैतिक राजनीतिक नेतृत्व। जब शक्ति को आध्यात्मिकता का मार्गदर्शन मिलता है, तब नेतृत्व केवल शासन नहीं करता, राष्ट्र का चरित्र भी घड़ता है। तो आज का यह सत्र भी विशेष रूप से उस नैतिकता के ना विषय पर हम सभी के विचार सुनेंगे और उन मूल्यों को अपने जीवन में फिर से पुनर्स्थापित करते हुए, उन्हें और आगे बढ़ाते हुए सुंदर राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना योगदान देंगे। तो आज के इस मंच पर विशेष अतिथियों को मैं आमंत्रित करती हूँ। हमारे मुख्य अतिथि श्री सुबोध उनियाल जी, संसदीय कार्य एवं वन मंत्री उत्तराखंड से पधारे हैं, आपका मंच पर स्वागत है। विशिष्ट अतिथि हमारे श्री विनोद सुयाल जी, राज्य मंत्री उत्तराखंड से पधारे हैं, आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। श्री डूंगर राम गेदर, विधायक सूरतगढ़ से राजस्थान से पधारे हैं हमारे बीच उपस्थित, हम आपका भी मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री रविशंकर, विधायक कर्नाटका से हमारे बीच उपस्थित हैं, हम आपका भी मंच पर हृदय से स्वागत करते हैं। आदरणीय भ्राता बीके मेहरचंद जी, राष्ट्रीय समन्वयक खेल प्रभाग, आपका भी हम मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रीमती सुमिता मलिक, महासचिव दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस, आपका भी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आध्यात्मिक मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करना। तो इस विषय पर आज हम बहुत सुंदर विचारों को इस मंच, प्रभावशाली मंच से सुनेंगे। उसके पूर्व मैं बहनों से निवेदन करती हूँ, हमारे सभी मंचासीन महान अतिथियों का स्वागत करें। मैं बहनों से निवेदन करती हूँ आकर के सभी का स्वागत करेंगे, तिलक पटका और बैज पहना करके हम सभी का स्वागत करते हैं। स्वागत है सुबोध उनियाल जी का, विनोद सुयाल जी का, हमारी आज की अध्यक्षा आदरणीय आशा दीदी जी का, महेशचंद भाई का, बहुत बहुत स्वागत। आज की सभा में आप सभी पधारे हुए मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मानवीय मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य ही हमारी बहुत बड़ी शक्ति है और इस शक्ति के आधार से हम हर कार्य को सहज कर सकते हैं। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी बताइए, राज्य को सुंदर रीति से चलाने के लिए धन चाहिए, सेना चाहिए या कानून चाहिए? तो मंत्री जी ने कहा कि एक छोटा सा दीपक उन्होंने जगाया और उस दीपक को जगाकर उन्होंने कहा, महाराज जैसे ये छोटा सा दीपक बहुत सुंदर प्लांट्स के द्वारा भी हमारे अतिथियों का स्वागत किया जाता है। तो मैं बता रही थी, राजा ने जब पूछा अपने मंत्री से कि एक सुशासन के लिए, एक सुंदर राज्य के संचालन में धन चाहिए, सेना चाहिए या कानून, तब उसने एक छोटा सा दीपक जगाया और कहा, महाराज जैसे ये छोटा सा दीपक जगने से हर एक चीज को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, ऐसे ही है आध्यात्मिक मूल्य जो हमारे जीवन में हो तो कानून, सेना और धन सभी सही दिशा में कार्य करने लगते हैं। तो उन आध्यात्मिक मूल्यों का ना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा मूल्य है, रोशनी जैसा, जो हमें हर चीज स्पष्ट करके दिखाती है और सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करती है। तो आज अखे आदरणीय मंच से हम इन्हीं बातों को ना आत्मसात करेंगे। तो स्वागत की श्रृंखला में मैं कुमारी दृष्टि को ना इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपने सुंदर भावों को नृत्य के द्वारा ना आज हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए आ रही है कुमारी दृष्टि सिरसा से, जो बाल्यकाल से ही ना अपने परिवार से, इस सेवा केंद्र से जुड़ी हुई है और राजयोग का अभ्यास करती है। दोनों ही पढ़ाई, आध्यात्मिक पढ़ाई और अपनी पढ़ाई दोनों करते हुए अपनी नृत्य की कला की सेवाएं भी देती हैं। तो कुमारी दृष्टि मंच पर आमंत्रित हैं। सुंदर प्रस्तुति दृष्टि, कुमारी दृष्टि के द्वारा की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में महिलाओं का संवेदनशील नेतृत्व समाज के निर्माण में एक नई दिशा का कार्य करता है, और महिलाएं जो अपना योगदान देती हैं न केवल घर को निर्माण करने में लेकिन समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसे ही आज हमारे बीच उपस्थित श्रीमती सुमिता मलिक जी हैं, जो फॉर्मर कैंडिडेट फॉर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली 2022 एंड 2025 और जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस रही। प्रोफेशनली आप एंटरप्रेन्योर हैं और आपकी बहुत रुचि है समाज सेवा में। आप सीईओ हैं सुरभि सुशिक्षा एनजीओ की, और समाज सेवा में बढ़ चढ़ करके अपना योगदान देती हैं, और ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ भी आप संलग्न हैं, और आज विशेष माउंट आबू में पधारे हैं, और आज हम आपके सुंदर विचारों से लाभान्वित होंगे आज के विषय पर। श्रीमती सुमिता मलिक जी।
ओम शांति। सबसे पहले मैं आशा दीदी जी का, आदरणीय आशा दीदी जी का, और सभी वरिष्ठ शिक्षकों एवं ब्रह्मा परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। 10 जुलाई से इस सम्मेलन में रहकर सीखने, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला। वह मेरे जीवन की एक अमूल्य धरोहर बन गया। इस सम्मेलन के प्रत्येक सत्र में हमें सीखने को मिला, एक अच्छी सीख मिली कि सच्चे राजनेता की पहचान केवल पद से नहीं बल्कि निमित भाव, निर्मल चित, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, सेवा भाव और श्रेष्ठ करेक्टर से होती है। हमें यहाँ राजाओं के राजा बनने की ट्रेनिंग मिल रही है, अर्थात पहले स्वयं विजय प्राप्त करें और श्रेष्ठ विचारों और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा समाज की सेवा करने की सीख मिल रही है। हमें ये भी सिखाया गया है कि लव और लॉ का संतुलन बनाए रखते हुए प्रेम, सम्मान और विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए। जब हमारी कथनी और करनी एक समान होगी तभी समाज का विश्वास हम में बढ़ेगा। हमें यह सुंदर शिक्षा भी मिली कि भारत पर अनेक आक्रमण हुए लेकिन भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। यह हमारी आध्यात्मिक शक्ति और हमारी संस्कृति की महानता है। हम सभी मूल रूप से आत्माएं हैं और एक दूसरे के भाई भाई हैं। भगवान का यह सुंदर संदेश मेरे हृदय को छू गया। यदि हम भगवान को हाथ पकड़ के चलें, भगवान का हाथ जब हम पकड़ के चलेंगे तो भगवान हमारे साथ हर कदम पर साथ चलेंगे। एक छोटी सी चिड़िया की कहानी ने भी हमें प्रेरणा दी कि परिणाम की चिंता किए बगैर हम अपना श्रेष्ठ प्रयास करते रहना चाहिए, और क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो बदलाव का प्रयास करते हैं। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी शिक्षा यही कि दूसरों को बदलने से पहले हम स्वयं को बदलना है। जब हम स्वयं बदलेंगे तभी परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा और राष्ट्र भी बदलेगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों और राजनेताओं को हृदय से बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि हम सभी यहाँ से अध्यात्म की एक अमूल्य सौगात लेकर जा रहे हैं जो हमारे जीवन में और जनसेवा में नई दिशा देगी। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि इतिहास हमें केवल राजनेताओं के रूप में नहीं बल्कि ऐसे जनसेवकों के रूप में याद रखे जिन्होंने राजनीति को अध्यात्म, सेवा, ईमानदारी और विश्वास से जोड़ा। एक बार पुनः आदरणीय आशा दीदी जी का दिल से आभार, धन्यवाद, और सभी ब्रह्मा कुमारी परिवार का और सभी राजनेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद सुमिता मलिक जी का। आपने बताया कि कैसे लव एंड लॉ का बैलेंस और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विश्व परिवर्तन में हमें योगदान देने में सहयोग करता है, और उसी के साथ साथ इन मूल्यों को अपने जीवन में धारण करने की और अपनी एक पहचान केवल राजनेता के रूप में नहीं, लेकिन एक बदलावकारी और उसके साथ साथ ना एक सुंदर समाज निर्माण के रूप में ना भी पहचान बना सकें, ऐसे सुंदर विचार आपने प्रस्तुत किए। अब मैं निमंत्रण देती हूँ हमारे भ्राता महचंद भाई, जो श्रीनगर उत्तराखंड से आए हुए हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। आप 1964 से केवल 15 वर्ष की आयु में इस विद्यालय से जुड़े और राज्यों का अभ्यास करते हुए 1970 में आपने अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित किया। हमारे गरेवाल सेंटर के आप डायरेक्टर हैं, आपके निर्देशन में अराउंड 50 सेंटर्स आपने ना स्थापित किए, जहां पर लोग आध्यात्मिकता का ज्ञान और योग सीख करके अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। आप हमारे स्पोर्ट्स विंग, जो ब्रह्मा कुमारी की राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत स्पोर्ट्स विंग है, आप उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, और पॉलिटिशियन सर्विस विंग के आप रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो आपके सुंदर विचारों को प्रस्तुत करने के लिए आपका स्वागत है।
ओम शांति। लगता है नाश्ता नहीं किया हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुबोध नियाल जी, जो के हमारे उत्तराखंड सरकार में वन मंत्री तथा हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत देंगे। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षा हमारे दीदी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा जैन जी, निर्देशिका ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम। जोरदार तालियां नहीं लगी है। श्रीमती सुमिता मलिक, महासचिव दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस, जिन्होंने अभी अभी अपने विचार दिए। श्री रविशंकर, विधायक कर्नाटक। श्री डूंगर राम गेदर, विधायक सूरतगढ़ राजस्थान। विशिष्ट अतिथि हमारे श्री विनोद सियाल जी, राज्य मंत्री उत्तराखंड। सभा में उपस्थित प्यारे भाई और बहनों, आज का ये कार्यक्रम बहुत सुंदर कार्यक्रम है। हमारे बीच में उत्तराखंड के वरिष्ठ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर श्री सुबोध नियाल जी पधारे हैं, मैं उनके लिए कुछ बोल रहा हूं। आज का विषय आत्मिक मूल्यों द्वारा सशक्त नैतिक राजनीतिक नेतृत्व। यह केवल एक विषय नहीं, बल्कि वर्तमान समय की अत्यंत आवश्यक सामाजिक आवश्यकता है। हमारे बीच आज पधारे सम्मान्य श्री सुमोध उनियाल जी, कैबिनेट मिनिस्टर। सभी विशिष्ट अतिथियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आपका मूल्य समय और आपकी गर्ममय उपस्थिति इस मंच की शोभा को अनेक गुणा बढ़ा रही है। हम ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज संसार तकनीकी रूप से विकसित हुआ है, लेकिन यदि नेतृत्व में नैतिकता, आत्मिक चेतना, करुणा और मानवीय मूल्य न हो तो विकास अधूरा रह जाता है। इसीलिए आज आवश्यकता केवल कुछ प्रशासक या सफल राजनेता की नहीं, बल्कि ऐसे नेतृत्व की है जो आत्मिक मूल्यों से प्रेरित होकर समाज के लिए आदर्श बने। ब्रह्मा कुमारी पिछले कई दशकों से राजयोग मेडिटेशन और अध्यात्म शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के भीतर सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास, धैर्य, करुणा, सहनशीलता और निर्णय क्षमता जैसे मूल्यों का विकास करने का कार्य कर रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज का यह खुला सत्र हम सभी के लिए प्रेरणा, चिंतन और सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनेगा। इन शुभकामनाओं के साथ आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। जब व्यक्ति समय को केवल पद या शरीर से नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और चेतन आत्मा के रूप में पहचानता है, यहाँ की जो मेन शिक्षा है, तब उसके निर्णयों में स्वार्थ नहीं बल्कि लोक कल्याण की भावना जागृत होती है। राजनीति का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं बल्कि समाज को सही दिशा देना है, और दिशा वही दे सकता है जिसके भीतर दिशा स्पष्ट हो। यह स्पष्टता आत्मिक चेतना से आती है। आज विश्व जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, भ्रष्टाचार, हिंसा, अविश्वास, तनाव, पर्यावरण संकट और सामाजिक विभाजन, उनका समाधान केवल कानूनों से नहीं बल्कि चरित्रवान नेतृत्व से संभव है। एक नैतिक नेता के 5 मुख्य आधार हैं: आत्म जागरूकता, सत्यनिष्ठा, सेवा भाव, करुणा और उत्तरदायित्व। जब इन मूल्यों के साथ निर्णय लिए जाते हैं तब शासन केवल प्रशासन नहीं रहता बल्कि जन सेवा का माध्यम बन जाता है। ब्रह्मा कुमारी का संदेश भी यही है कि विश्व परिवर्तन का प्रारंभ आत्म परिवर्तन से होता है। जब नेता समय शांत, संतुलित और मूल्यनिष्ठ होगा तभी समाज भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। इसी उद्देश्य से आज हम सभी इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमें विश्वास है कि हमारे सभी सम्मानीय वक्ताओं के अनुभव और विचार इस विषय को नई दिशा देंगे तथा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आज हमारे बीच में उत्तराखंड सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी की गर्ममय उपस्थिति हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और सम्मान का विषय है। माननीय सुबोध उनियाल जी एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनकी पहचान केवल एक सफल राजनेता के रूप में ही नहीं बल्कि एक ईमानदार, सरल, मधुरभाषी और कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व के रूप में होती है। आपकी कार्यशैली में समय का सम्मान, विषय की गहराई और निर्णयों की स्पष्टता सहज रूप से दिखाई देती है। आप प्रत्येक विषय को धैर्यपूर्वक सुनते हैं और समाधान की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि अनेक लोगों के मन में आपके प्रति विश्वास और आत्मीयता का भाव है। जब भी हमें आपसे मिलने का सुअवसर मिला, आपने व्यस्तम दायित्वों के बावजूद आत्मीयता से समय दिया। समाज हित और लोक कल्याण से जुड़े कार्यों के प्रति आपका सकारात्मक सहयोग सदैव प्रेरणा प्रदायक रहा है। आपका व्यक्तित्व संवेदना, सौम्यता और दृढ़ता का सुंदर संगम है। आपके मुखमंडल का तेज, आपकी विनम्रता और आपकी सहज मुस्कान हर मिलने वाले को अपनत्व का अनुभव कराती है। आज जब हम आत्मिक मूल्यों द्वारा सशक्त नैतिक राजनैतिक नेतृत्व जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तब आपकी उपस्थिति इस सत्र को और भी अधिक सार्थक एवं प्रेरणादायी बना रही है। ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं सम्मान करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहें। आपके लिए 2 लाइनें दे रहा हूं। दीपक समय जलता है तभी जग को उजियारा देता है, जो जन सेवा का पथ चुनता है वही लोगों के दिलों में बसेरा लेता है। आज ज्ञान सरोवर की इस पावन धारा पर हम एक ऐसे सम्माननीय व्यक्तित्व का स्वागत करने जा रहे हैं, जिनकी सादगी, सहजता, कर्मनिष्ठा, जन सेवा का भाव उन्हें लोगों के बीच विशेष पहचान दिलाता है। कहा गया है कि बड़े लोगों की पहचान उनके पद से नहीं होती, उनकी पहचान उनके व्यवहार, उनके संस्कार और उनके सत्कार से होती है। हमारे बीच में मान्य महोदय, आपके व्यक्तित्व में विनम्रता, आपकी वाणी में मधुरता, आपके विचारों में स्पष्टता और आपके कार्यों में जन कल्याण की भावना दिखाई देती है। व्यस्तम दायित्वों के बीच भी लोगों में आत्मीयता से साथ मिलना और उनकी बात को गंभीरता से सुनना आपकी विशेषता है। आपके लिए दो लाइनें दे रहा हूँ। जो अपने कर्मों से पहचान बनाते हैं, वही इतिहास के पन्नों में मुस्कुराते हैं। पद तो समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन सेवा के संस्कार सदैव अमर हो जाते हैं, आपका हमारे बीच में पधारने पर माननीय मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका आभार प्रकट करते हैं। हमारे बीच में कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, राजयोगिनी तपस्विनी, हमारे दीदी जी बीके आशा जी, निर्देश का ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम पधारे हैं। हम सब जानते हैं कि दीदी जी कितना कार्य कर रहे हैं। ओआरसी गुड़गांव इस ईश्वर संस्थान में सारे विश्व में ऐसे चमक रहा है जैसे कभी नालंदा यूनिवर्सिटी चमकती थी भारत के विश्व के अंदर। आप सदैव सेवा में व्यस्त रहते हैं। हमने देखा कभी एक प्रोग्राम, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कोई दिन ऐसा होता ही नहीं कि जब वहां कोई प्रोग्राम ना हो रहा हो। मैं कई बार सोचता हूं कि दीदी जी को बाबा ने कितनी ताकत दे रखी है, 24 घंटे लगे रहते हैं और ऐसी प्रतिभाएं ही विश्व को बदलती हैं। उनका इस विश्व परिवर्तन में एक अहम भूमिका है। मैं उनके लिए चार लाइनें दे रहा हूं। धरती सा धीरज दिया आसमान सी ऊंचाई, खुदा ने तराश कर ये तस्वीर बनाई, ज्ञान गुण और शक्तियों से वह इनको भरते रहते हैं, ऐसी सजीव प्रतिमा को हम आशा दीदी कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का हमारे कार्यक्रम में यहाँ पधारे। और आज आप सब जानते हैं कि आप प्रखर वक्ता हैं, कितने अच्छे विचार रखते हैं। कल भी जब आपने विचार रखे तो सीएम साहब जो गोवा से आए थे वो कितने खुश हुए हैं, क्योंकि प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व कम मिलते हैं। तो दीदी जी उनमें से एक हैं। हमारी दादी आज नहीं है, परंतु उनके स्थान पर बाबा ने हमको ऐसी महान आत्माएं दी हैं जो कि उनके पद चिन्हों पर चलकर इस संस्था को सारे विश्व में चमका रही हैं। हमारे बीच में सुमिता मिलक महासचिव दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस पधारी हैं, जिन्होंने अभी विचार रखे हैं। मैं उनके लिए भी दो लाइनें दे रहा हूं। चांद अपनी चांदनी से पहचाना जाता है, फूल अपनी खुशबू से पहचाना जाता है, इंसान अपने शब्दों से नहीं अपने श्रेष्ठ कर्मों से पहचाना जाता है, हमारे बीच में हमारे विधायक कर्नाटक से पधारे श्री रविशंकर जी, उनके लिए मैं चार लाइनें दे रहा हूं। जिसके चेहरे पर सदा मुस्कान रहती है, जिसके हृदय में सबके लिए सम्मान रहता है, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा का प्रमाण रहता है, प्रेरणा का प्रमाण रहता है। श्री डूंगर राम गेदर, विधायक सूरतगढ़ राजस्थान। जो समय जलकर औरों को मार्ग रोशन करे, जो समय जलकर औरों का मार्ग रोशन करे वही दीपक कहलाता है। जो समय बदलकर औरों को बदलने की प्रेरणा दे वही सच्चा सेवाधारी कहलाता है, वही सच्चा सेवाधारी कहलाता है। हमारे बीच में उत्तराखंड से राज्य मंत्री श्री विनोद सियाल जी पधारे हैं, उनके लिए मैं दो लाइनें दे रहा हूं। कर्म ऐसे कीजिए कि पहचान बन जाए, कर्म ऐसे कीजिए कि पहचान बन जाए, हर कदम पर नई मिसाल बन जाए। जिंदगी तो सब जीते हैं दुनिया में, जिंदगी तो सब जीते हैं दुनिया में, जीवन ऐसा जियो मेरे भाई के प्रेरणा बन जाए, के प्रेरणा बन जाए। हमारे बीच में हमारे इस मन संचालन को कर रही हमारी फालुकनी बहन जो कि वो अरसे गुड़गांव से ही पधारे हमारे बीच में, तो उनके लिए मैं दो लाइनें दे रहा हूं। जो समय जलकर औरों का मार्ग रोशन करे, जो समय जलकर औरों का मार्ग रोशन करे वही दीपक कहलाता है। जो समय बदलकर औरों की बदलने की प्रेरणा दे वही सच्चा सेवाधारी कहलाता है, वही सच्चा सेवाधारी कहलाता है। मैं दो लाइनें आप भाई बहनों पर भी दे रहा हूं, आप सोचेंगे सभी को दे दिया हमें कुछ नहीं दिया है, क्योंकि आपके बिना तो सारा कार्यक्रम ही अधूरा हो जाता। आपके आने का आंखों में ख्वाब संजोए बैठे थे, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस होगी, भाई बहन हमारे पॉलिटिकल राजनेता लोग आएंगे, आपके आने का आंखों में ख्वाब संजोए बैठे थे, आपकी यादों को दिल में बसाए बैठे थे। इस सुनहरी घड़ी का था इंतजार हमें, इस सुनहरी घड़ी का था इंतजार हमें, हम इसी दिन के लिए नगमे सजाए बैठे थे, हम इसी दिन के लिए नगमे सजाए बैठे थे। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता महरचंद जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर शब्दों के मोतियों की माला सभी को पिरो करके पहनाई, और आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ना? जैसे एक छोटा सा बच्चा था, उसने गुब्बारे बेचने वाले को देखा, उसके पास बहुत रंग बिरंगे गुब्बारे थे और कुछ काले गुब्बारे भी थे, और उस बच्चे ने कुतूहलवश पूछा गुब्बारे वाले से कि ये काला गुब्बारा भी क्या हवा में उड़ेगा। तो ना उसकी मासूमियत भरे सवाल से ना उस गुब्बारे वाले ने कहा कि गुब्बारा उसके रंग के वजह से नहीं, लेकिन उसके अंदर की हवा कैसी है उसके आधार से ऊपर जाता है, तो ये गुब्बारा भी ऊपर जरूर जाएगा। तो ऐसे ही हर एक आत्मा जो अपने जीवन में ऊंचाइयों पर जाती है, वो अपने अंदर के मूल्यों के आधार से, अपने अंदर के गुणों के आधार से, अपने अंदर की शक्तियों के प्रयोग के आधार से आगे बढ़ती है। तो गांव से लेकर के राष्ट्र तक नैतिक नेतृत्व ना जो जमीनी स्तर से शुरू होता है ना, लोकली हम हर एक के साथ व्यवहार में जैसे आते हैं उन मूल्यों के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री रविशंकर जी, जिनका मैं स्वागत करती हूं। आप लॉ ग्रेजुएट हैं तथा मैसूर से के निकट स्थित के आर नगर निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार विधायक के रूप में विधायक बने हैं आप, और उनका परिवार भी राजनीति से जुड़ा हुआ है और राजनीति क्षेत्र में रह करके वर्षों से समाज की आप सेवा कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के न क्षेत्रीय स्थान से भी जुड़े हुए हैं और बहुत ही सहयोगी हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ श्री रविशंकर जी को अपने शुभ विचार प्रस्तुत करने।
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಬಾಬಾರವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶಾ ಭವನ್ ರವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಯುತ ಗಣ್ಯರು, ಏನು ಉತ್ತರಾಖಂಡಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಯುತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆಪ್ ಸಭಿಕೋ ಮೇರಾ ವಂದನಾ ಹೈ, ಬಾಯಿಜಿ ಸುನಾ ರಹೇ ಹೈ ಕಿ, ಔರ್ ಮಂಚ್ ಪೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆದರಣೀಯ ಆಶಾ ದೀದಿ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ವಂದನಾ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ, ಮಂಚಾಸೀನ್ ಸಭಿ ವರಿಷ್ಠೋಂ ಕೋ ಮೇ ವಂದನಾ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಮಾಜದ ಭಕ್ತವೃಂದದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ.
ಮುಜೆ ಇಸ್ ಬಾಬಾಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಆನೆ ಕಾ ಮೌಕಾ ಮಿಲಾ ಔರ್ ಇಸ್ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇ ಮುಜೆ ದೋ ಶಬ್ದ ಸುನಾನೆ ಕಾ ಭೀ ಮೌಕಾ ಮಿಲಾ, ಇಸ್ಲಿಯೆ ಬಹುತ್ ಮೇ ಖುಷ್ ಹೂಂ.
ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರ ಇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಕೆಆರ್ ನಗರದ ವಿಭಾಗದ ಅಮೃತಕ್ಕನವರಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ.
ಇಸ್ ರಾಜನೀತಿಜ್ಞೋ ಕಿ ಇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿಯಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಔರ್ ಮೈ ಕೆಆರ್ ನಗರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇ ಮೈ ಯಹಾ ಆಯಾ ಹೂ ಔರ್ ಜೋ ಬಹನ್ ಮುಜೆ ಲೇಕೆ ಆಯೇ ಹೈ ಅಮೃತಾ ಬಹನ್ ಉನ್ಕೋ ಭೀ ಮೈ ವಂದನ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ತಾ ಹೂ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬದುಕು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದುಕು, ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಒಂದು ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ.
ರಾಜನೀತಿಯೋಂಕ ಜೊ ಜೀವನ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಬಹುತ್ ಸವಾಲೋನ್ ಸೆ ಗುಂಜನ ಪಡ್ತಾ ಹೈ ತೋ ವೋ ಮೈ ಕಹನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ.
ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಬಾರವರು ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ 1936ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಬಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆತೆ ಹುವೆ ಬಿ 1936 ಸೆ ಇಸ್ ಕಾರ್ಯ ಕೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಯೋಗದಾನ್ ದಿಯೆ ಹೈ.
ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದುಕನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿರಬಹುದು, ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ. ಆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ.
ರಾಜನೀತಿಯೊಂಕಿ ಜೀವನ್ ಬಹುತ್ ತನಾವ್ ಸೆ ಜುಡಾ ಹುವಾ ರಹತಾ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಹಿ ಗೂಂಜತೆ ರಹತೆ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಐಸೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ ಬಹುತ್ ತನಾವ್ ಕೋ ನಿಭಾನೆ ಮೇ ಉಸ್ಕೋ ಮಿಟಾನೆ ಮೇ ಬಹುತ್ ಸಹಯೋಗ ದೇತಾ ಹೈ.
ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಸೀಮಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೋಪವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬದುಕನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಪರಿಹರಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ.
ಪಿಛಲೆ 3 ಸಾಲೋಸೆ ಇಸ್ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ಮೇರೆ ಜೀವನ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ಪ್ರಭಾವ ಪಡಾ ಹೈ. ಜೋ ಭೀ ಹಮ್ ರಾಜನೀತಿಯೋ ಕೆ ಜೀವನ್ ಮೇ ಜೋ ಭೀ ತನಾವ್ ಕೆ ವಾತಾವರಣ ಯಾ ಗುಸ್ಸಾ ಆತಾ ಹೈ, ಕುಛ್ ಭೀ ಥೋಡಾ ಊಪರ್ ನೀಚರ್ ಹೋತಾ ರಹತಾ ಹೈ, ತೋ ಉಸ್ ಸಮಯ ಯೆ ಜ್ಞಾನ ಮುಝೆ ಬಹುತ್ ಲಾಭದಾಯಕ ಹುವಾ ಹೈ ಮೇ ಅಪ್ನೆ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕೋ ಲಾನೆ ಮೇ.
ಇದು ಕೇವಲ ನನ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ಯುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗದೇನೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರುವಂತ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖೇನ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ.
ಮೇರೆ ಜೆಸೆ ಜೋ ಭಿ ಯುವ ರಾಜನೀತಿ ಹೈ ಉನ್ ಲೋಗೋಕೋ ಭಿ ಮೇ ಔರ್ ಭಿ ಯಹಾಂ ಸೆ ಜಾಕರ್ ಪ್ರೇರಿತ ಕರ್ಕೆ ಔರ್ ಭಿ ಉನ್ಕೋ ಆಗೇ ಬಡಾನೆ ಮೇ ಉನ್ಕೋ ಯಹಾಂ ಲೇಕೆ ಆನೆ ಕಾ ಕಾರ್ಯ ಮೇ ಆಗೇ ಮೇ ಕರ್ತಾ ರಹೂಂಗಾ ಯೇ ಮೇ ಕಹನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ.
ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ಅಬುನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಹಳಷ್ಟು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಸಾರಿ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಫೈಲಾ ಹುವಾ ಹೈ ಔರ್ ಸಾರಿ ಸಮಾಜ ಮೇ ಶಾಂತಿ ಔರ್ ನೈತಿಕತಾ ಲಾನೆ ಮೇ ಬಹುತ್ ಉನ್ಕಾ ಯೋಗದಾನ್ ಹೈ ಔರ್ ಆಗೇ ಭಿ ಐಸಾ ಹಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗೇ ಬಡತೇ ರಹೇಗಾ ಔರ್ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತೇ ರಹೇಂಗೆ.
ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿದಾಯಕವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಮಾಜ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ.
ಆಜಕಲ್ ಜೋ ಭಿ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಯುದ್ಧ ಕಾ ವಾತಾವರಣ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಭಿ ಸಬ್ಕಾ ಸಹಯೋಗ ಸಂಸ್ಥಾ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಸಹಯೋಗ ಸಬ್ಕೋ ಮಿಲ್ತಾ ರಹೇ ಯೇ ಮೇರಾ ಶುಭ ವಿಚಾರ ಹೈ.
ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅಮೃತಕ್ಕನವರು ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಬಹುದು, ಒಂದು ಹೊಸ ತರ ಬದಲಾವಣೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಇದಾಗಿದೆ.
ಹಮಾರೆ ಬಹನ್ ಜೋ ಲೇಕೆ ಆಯ್ ವೋ ಮುಝೆ ಬಹುತ್ ದಬಾವ್ ಲೇಕೆ ಮನಾ ಆನಾ ಹಿ ಹೈ ಐಸೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಲೇಕೆ ಆಯ್ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಕಲ್ ಸೆ ಮೇ ಯಹಾ ಹೂ ಔರ್ ಇಸ್ ವಾತಾವರಣ ಕಾ ಬಹುತ್ ಲಾಭ ಲೇ ರಹಾ ಹೂ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಮುಝೆ ಖುಷಿ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಶಾಂತಿ ಕಾ ಅನುಭವ ಮುಝೆ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ.
ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಹಳ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಆಯ್ತು.
ಕಲ್ಬಿ ಜೋ ಪ್ಲಾನರಿ ಸೆಷನ್ ತಾ ಉಸ್ಮೇ ಬಹುತ್ ಸಾರೇ ವಿಚಾರೋ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಚಲಾ ಉಸ್ಮೇ ಭಿ ಬಹುತ್ ಕುಛ್ ವಿಚಾರ ಮುಝೆ ಸಿಖ್ನೆ ಕೋ ಮಿಲಾ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಲಾಭ ಹುವಾ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಒಂದು ಮೂರು ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಅವರು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು, ಅವರ ಬದುಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಆ ತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಏನೆಲ್ಲ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಂತ ಮನುಷ್ಯ, ಅವರು ಮನೆಯವರು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೌಂಟ್ ಅಬುಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕುಡಿತದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಮಾಜದ ಅದು ಬಾಬಾರವರ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ.
ಜಬ್ ಮೇ ಯಹಾ ಬೈಠಾ ಥಾ ತೋ ಮುಝೆ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಬಾಯಿ ಸೆ ಮಿಲ್ನೆ ಕಾ ಮೌಕಾ ಮಿಲಾ ಜೋ ಚಾರ್ ಬಾರ್ ವಿಧಾಯಕ್ ರಹೇ ಹುವೆ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಜೀವನ್ ಸೆ ಬಹುತ್ ಮುಝೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಮಿಲಾ ಕಿ ವೋ ಕೈಸೆ ದುರ್ವ್ಯಸನೋ ಸೆ ಮುಕ್ತ ಹುವೆ ಔರ್ ಆಗೆ ಬಢ್ ರಹೇ ಹೈ.
ಇವತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರುವಂತ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ರವಿಶಂಕರ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನ ತರಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಮಾಜ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ.
ತೋ ಅಭಿ ಹಮ್ ಲೋಗೋನೆ ಸುನಾ ಕಿ ಚೆಹರೆ ಮೇ ಏಕ್ ಮುಸ್ಕುರಾಹಟ್ ಲೇತೆ ರಹನಾ ಬಹುತ್ ಖುಷಿ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೋತಿ ಹೈ ವೋ ಯಹಾಂ ಹಾಂ ಸೆ ಹಮ್ ಸಿಖ್ ಕೆ ಜಾ ರಹೇ ಹೈ ಕಿ ಸಬ್ಕೆ ಚೆಹರೆ ಕೈಸೆ ಮುಸ್ಕುರಾತೆ ರಹೇ ಔರ್ ಬನಿ ರಹೇ ಮುಸ್ಕುರಾಹಟ್ ಬಿ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಕೂಡ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ತರ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತೆ, ಆ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 85% ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಚಿಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಮಾಜ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಸದಾ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ.
ಆಜ್ ಮೈ ಪಾಂಡವ ಭವನ್ ಗಯಾ ಥಾ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಪರ್ ವಹಾ ಬಿ ಭ್ರಮಣ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ಫಿರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇ ಬಿ ಗಯೆ ಥಾ ತೋ ವಹಾ ಸೆ ಬಿ ಮಾಲೂಮ್ ಪಡಾ ಕಿ ಕೈಸೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯೋ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಶರೀರ ಕಿ ತಂದರುಸ್ತಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಿ ಬಹುತ್ ಸಾರಿ ಮೆಹನತ್ ಕಿಯೇ ಜಾ ರಹೇ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಮನ್ ಕಿ ತಂದರುಸ್ತಿ ಸೆ ಹಿ ಶರೀರ ಕಾ ಬಿ ತಂದರುಸ್ತಿ ರಹ ಸಕ್ತಿ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಬಿ ಹಮ್ನೆ ಬಹುತ್ ಸಮಝಾ.
ಇವತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತ ಯುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ.
ತೊ ಮೇರೆ ಜೈಸೆ ವಿ ಯುವ ರಾಜನೀತಿಯೋಕೋ ಯಹಾ ಬುಲಾಕರ್ ಏಸಾ ಮಂಚ ಕಾ ಮೌಕಾ ಮಿಲಾ ತೋ ಯೇ ಮುಝೆ ಬಹುತ್ ಪುಣ್ಯ ಸಮಜ್ತಾ ಹೂ ಮೇರೆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾತ್ ಸಮಜ್ತಾ ಹೂ.
ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂತೋಷ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ತರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರುವಂತ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ.
ಯಹಾ ಆಕೆ ಮೇರೆ ಅಪ್ನೇ ಜೀವನ ಮೇ सुख चैन की और चेहरे में एक मुस्कुराहट बनी रहे ऐसे जीवन रखने का मैं वादा करता हूँ।
अदे रीतले इवत्तु नानु इल्ले मैं इधर इस मंच पे एक वादा करते हूँ, अगले साल में ये कार्यक्रम के आते हो तब पूरी पूरा हमारा बातचीत हमारा विषय पूरा हिंदी में होगा, वो हमारा वादा है। जरूर जरूर अगले बार में सब कुछ हिंदी में बात करूंगा। आप सबको लिए मेरा प्रणाम कहते और सब लोगों का ये बाबा का आशीर्वाद सबको में रहना और सबको सुख शांति नेमदी आशीर्वाद सबके सब में रहना, इसलिए ये ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಆ ಬಾಬಾ ಕರುಣಿಸಲಿ। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಸ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ತರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ।
आप सभी भी अपने जीवन में यहाँ से परिवर्तन लाने का शुभ इच्छा और शुभ विचार लेके जाए, ये भी मेरा विचार है। और सभी तो अभी हिंदी में ही हो, जैसा वाणी वैसा पानी, जैसा वाणी
वो भी अदेर हिंदी में बात करें। नम्मा अमृत कनौर ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಾಲೂಕಿದೆ, ಒಂದು ಕೇರ್ನಗರ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲೂಕು। ಕೇರ್ನಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಚೇರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ।
सो उनके क्षेत्र पे ऑलरेडी परमानेंट सेंटर है बाबा का घर, दूसरा एक क्षेत्र है सालीग्राम, वहां भी एक जगह लेके घर बना के बाबा के सर्विस में मैं बहुत योगदान दूंगा, ये मेरा विचार है।
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಅದು ಅಮೃತಕನವರಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಾಬಾರವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ। ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂತ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕರುಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಬಾಬಾರವರಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶಾ ದೀದಿಯವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ।
तो बहुत बहुत धन्यवाद श्री रविशंकर जी का, और हमें बहुत खुशी है कि आप भी इस विद्यालय से जुड़कर के राज्यों का अभ्यास करते हुए तनावपूर्ण परिस्थितियों के अंदर योग का लाभ ले रहे हैं और सेवा केंद्र खोलकर औरों को भी लाभान्वित करवा रहे हैं, और आपका बहुत बहुत आभार एक और सेवा केंद्र खोलने में अपने सहयोग देने के लिए। तो अनेकों को उससे लाभान्वित होंगे उससे, तो आपका पुनः हम धन्यवाद करते हैं। हर एक दीपक जब जगता है तो एक दीप से दूसरा दीप जगता है, एक लाइट से दूसरी लाइट नहीं जगती है लेकिन एक दीप से दूसरा दीप जगता है। यही आध्यात्मिक मूल्यों का भी ताकत है कि एक के अंदर आध्यात्मिक मूल्य जब प्रज्वलित हो जाते हैं तो दूसरे को भी वो प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। तो हमारे बोल से नहीं लेकिन हमारे कर्म हमारे व्यवहार से हमारा व्यक्तित्व भी बनता है और हमारे जीवन में परिवर्तन जो है वही दूसरों के परिवर्तन के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। तो आज हमारे बीच ऐसे ही श्री डूंगर राम गेदर जी उपस्थित हैं, जो डूंगर राम गेदर जो 16वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं और सूरतगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और अपने जीवन में न अनेक वर्षों का जो अनुभव है उनके सुंदर शुभ विचार आज हमारे सामने प्रस्तुत करने पधार रहे हैं श्री डूंगर राम गेदर जी।
ओम शांति। सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए, राजनीतिकों के सम्मेलन आत्मिक मूल्यों द्वारा सशक्त नैतिक राजनीतिक नेतृत्व विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के आयोजक राजनीतिक सेवा प्रभाग एवं ब्रह्म कुमारी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बहन आशा दीदी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुबे दुनियाल जी, विशिष्ट अतिथि विनोद सुवाल जी, श्री कर्नाटक के विधायक, अभी बहुत ही अच्छे विचार आपने रखे और वायदा किया कि अब की बार जब आएंगे तो आप हिंदी में आपसे बात करेंगे, आप श्री रविशंकर जी, श्री बीके मेहरचंद जी, बहन सुमिता मलिक जी, स्टेज का सफल संचालन कर रही बहन बीके फाल्गुनी जी, वास्तव में ही बहुत ही अच्छा विषय हम सब लोगों को दिया है कि आज की राजनीति में हम जो नैतिक मूल्य है उन नैतिक मूल्यों में कैसे सुधार करें। और आज दीदी यदि इस नैतिक मूल्यों को सुधार की जरूरत महसूस हुई है, यह भी बड़ा सोच का विषय है कि इसकी जरूरत आज हम लोगों को क्यों पड़ी। वैसे तो भारत देश के अंदर प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में प्रजा का, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा राज है वो चलाया जाता है, और प्रजातंत्र के अंदर सभी व्यक्ति, टोटल देश के व्यक्ति किसी न किसी तरीके से राजनीति से जुड़े होते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं राजनीति से दूर हूं तो मेरे ख्याल में वह झूठ बोलता है। हर व्यक्ति राजनीतिक है, लेकिन राजनीति में नहीं है तो सिर्फ वो लोग नहीं है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, जो व्यक्ति दिवालिया घोषित है, जो पागल है। इसके अलावा हम सब लोग राजनीति में है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब राजनीति में दो तरह के लोग हैं, नंबर एक सक्रिय राजनीतिक है, एक निष्क्रिय राजनीतिक है। सक्रिय वो है जो सोच समझ करके अपना वोट डालता है, अपना मत का उपयोग करता है, और निष्क्रिय वो है जो बगैर सोचे समझे अपने वोट का, अपने मत का प्रयोग करता है। तो हम लोग इस देश के अंदर यदि हम लोगों को प्रजातंत्र को सफल करना है, यदि हम लोग सब लोग चाहते हैं कि प्रजातंत्र सफल हो, तो हम लोगों को राजनीति में रुचि रखने की आदत हम लोगों को डालनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज जो ब्रह्म कुमारी जी ने आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित, नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति हो, इसकी जरूरत जो महसूस की है, वास्तव में यह बड़ा सोच का विषय है कि किस तरह से राजनीति में गिरावट जो आ रही है उस पर हम लोगों को सोच समझने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा मेरा परिचय देना चाहता हूं। मैं सूरतगढ़ विधानसभा राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में है, वहां से मैं हूं, विधायक हूं, और 1989 में मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद जब मेरे समझ में आई कि मुझे राजनीति में आना है, तो मैंने ये भी समझा कि मुझे राजनीति में बदलाव करना है। इसलिए नहीं आना है कि मुझे एमएलए बनना है, कि मंत्री बनना है, मुझे राजनीति में बदलाव करना है। और जब मुझे बदलाव करना है तो मुझे उसकी शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने उसी समय प्रण किया कि नंबर एक, मैं शादी नहीं करवाऊंगा, ताकि कम से कम मेरे बाद मेरे पर राजनीतिक पारिवारिक कोई आरोप न लगे कि इसने परिवार के लिए फलां किया, ये किया, वो किया। दूसरा, मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं होगी। मैं पहले दीदी राजस्थान सरकार के अंदर राज्य मंत्री रहा हूं, माटीकला बोर्ड का चेयरमैन रह करके मेरे को तनख्वाह मिलती थी। आज मैं विधायक हूं, मुझे तनख्वाह मिलती है, मेरे खाते में आती है, लेकिन इसके अलावा इस धरती पर एक भी रुपए की संपत्ति, किसी भी तरह की संपत्ति मेरे नाम से नहीं। और आज भी जिस सूरतगढ़ से मैं विधायक हूं, वहां मैं किराए के मकान पर रहता हूं, और मुझे नींद अच्छी आती है, मुझे मेरी नींद में कोई भी खलल है वो पैदा नहीं होती, क्योंकि मैं दिन में सोच में, विचार में, मन में ऐसा कोई भी काम नहीं करता जो मेरी नींद में खलल पैदा करे। इसलिए, और यदि हम लोगों को
आगे बढ़ना है, तरक्की करना है। आज जिन मूल्यों की बात हम लोग कर रहे हैं, बड़ा उन मूल्यों पर आज भी हमें सोच समझने की जरूरत है कि जो चोरी है, लूटपाट है, झूठ है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, नशा है, इसका कोई स्कूल नहीं है। क्या कोई स्कूल है जो इन बातों को सिखाता है? क्या कोई कॉलेज है जो इन बातों को सिखाता है? क्या कोई यूनिवर्सिटी है जो इन बातों को सिखाता है? क्या कोई मठ है जो इन बातों को सिखाता है? क्या कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इन बातों को सिखाता है? फिर हम लोग ये बातें कहां से सीख करके आते हैं? हम लोगों को ये बातें या तो परिवार से मिलती है, माँ बाप से मिलती है। माँ बाप इस बात को लेकर के यदि पल्ला झाड़े कि भाई हमें तो पता नहीं, ये तो अपने आप होता है। मैं कहना चाहता हूं कि बेटा अपने माँ बाप को सबसे ताकतवर मानता है, बुद्धिमान मानता है, समझदार मानता है, और वो अपने माँ बाप को आदर्श मानता है। यदि बाप बेटे के सामने सिगरेट बीड़ी पीता है और वो ये सोचे कि मैं तो पीऊं लेकिन बेटा न पिए तो ठीक है, ये होने वाला नहीं है। यदि बाप बेटे के सामने ढक्कन खोलता है रात को, शाम को, और वो सोचता है कि मैं तो थोड़ा सा पी लूं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरा बेटा नशे में नहीं पड़ना चाहिए, ये हो नहीं सकता। तीसरा है गुरु। किससे सीखता है? वो गुरु से भी सीखता है। तो हम लोग जो गुरु, आज बड़े देश की विडंबना है कि जो बड़े बड़े गुरु हैं वो बहुत से बुरे बुरे लांछनों के अंदर जेलों में पड़े हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है नैतिक मूल्यों के पतन का। तीसरा जो उसका उस जो सर्किल है वो है फ्रेंडशिप सर्किल। जो उसका फ्रेंडशिप सर्किल है वहां से भी वो बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो यदि उसका फ्रेंडशिप सर्किल पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है वो दिन में किसके साथ खेलता है, किसके साथ उठता बैठता है, उसका फ्रेंडशिप सर्किल क्या है, उसके फ्रेंडशिप सर्किल यानी किस तरह का है, ये बातें भी हम लोगों को सोचनी और समझनी चाहिए। और यदि और हम लोगों को जितने आज मैं सोचता हूं, मैं ये मानता हूं कि इस देश में दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। नंबर एक, पैसा हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, पैसा कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आता है। जब हम लोगों ने कोई भी चीज, हम लोगों ने जब गिलास खरीदा, आखिरी कंज्यूमर हमें, हम लोगों ने जब गिलास खरीदा तो गिलास बनाने वाली जो कंपनी का मालिक है उसको उसका मुनाफे का जो हिस्सा है वो उसके पास पहुंचता है। यदि हम लोग उसको नहीं खरीदेंगे तो उसका मुनाफे का हिस्सा उसके पास नहीं पहुंचेगा। इसलिए पैसा हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। यह किसी को बहम हो कि पैसा हमेशा ऊपर से नीचे आता है या अडानी अंबानी टाटा बिरला डालमिया नीचे गरीब की मदद करता है तो ये सच नहीं है। गरीब का पैसा ऊपर जरूर जाता है। दूसरा, व्यवस्था, सिस्टम, न्याय, कानून, ये हमेशा ऊपर से नीचे आता है, ये कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता है। दीदी जिस व्यवस्था को संभाल रही है उस व्यवस्था को बनाने में दीदी का योगदान है। यदि दीदी ये सोचे यहाँ के यानी कार्यक्रम ये सोचे कि एक सामान्य सा कार्यकर्ता है वो यानी बहन जो सामान्य काम करती है वो सारे सिस्टम को सुधारते तो ये सही नहीं है। व्यवस्था हमेशा ऊपर से नीचे आती है, पैसा हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। तो जो व्यवस्था बिगड़ रही है उसमें कहीं न कहीं ऊपर का हाथ है, ये हम लोगों को सोचना और समझना पड़ेगा। हम लोग यदि फेसबुक, व्हाट्सएप, झूठी यूनिवर्सिटी में देख करके हम लोग सिर्फ यानी अपना मन बहलाने का काम तो हम लोग कर सकते हैं लेकिन हम लोग झूठ में जी रहे हैं। यदि हम लोग उसकी सच्चाई नहीं जानेंगे, कौन सी किताब में लिखा है, कौन से इतिहास में लिखा है, कहां ये सच्चाई है, इस बात पर यदि हम लोग विचार नहीं करेंगे और ऐसे ही हम लोग यदि बातें करते रहेंगे तो नैतिक मूल्यों में सुधार है वो होने वाला नहीं है। इसलिए नैतिक मूल्यों में सुधार की जरूरत है। हर कोई राजनीतिक व्यक्ति यहां से जब बोलता है, कहीं भी जब अपनी बात करता है तो वो ये कहता है मैं बड़े सामान्य परिवार से हूं, मैं बड़े गरीब घर से था, मेरे दादाजी खेती करते थे, मेरे बापूजी ये करते थे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आज मेरे पास कितनी संपत्ति है। जब मेरे दादाजी खेती करते थे, मेरे पिताजी के पास कुछ भी नहीं था, मैं जब चुनाव लड़ा तब मैं यानी सामान्य से परिवार था, तो आज 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आज हजारों करोड़ की संपत्ति मेरे पास कहां से आई है, ये बात हम लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। इस बात पर भी हम लोगों को ध्यान है वो देना चाहिए। जो अच्छी बातें हैं वो पहली क्लास में सिखाई जाती है, जरूरत ही नहीं है। जब पहली क्लास में पढ़ते थे तब सिखाया जाता है, सिखाया जाता था कि हिंसा करना पाप है, सिखाया जाता था ना, हिंसा करना पाप है, यानी जीव हत्या पाप है। कितनी बड़ी बात है यदि इस एक बात को हम लोग जीवन में धारण कर लेते, पहली क्लास में बताई हुई बात को यदि जीवन में धारण कर लेते तो इस देश में होने वाले टोटल झगड़ों का सफाया हो जाता, खात्मा हो जाता। जीव हत्या पाप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप वेजिटेरियन हैं कि नॉन वेजिटेरियन हैं, कि आपने किसी को जीव को मारा या काटा या बाडा, नहीं, जीव हत्या से मतलब है कि मेरी वजह से किसी भी जीव को दुख नहीं पहुंचेगा। यदि हर व्यक्ति ये सोच ले कि मेरी वजह से किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को दुख नहीं पहुंचेगा, मेरी वजह से मेरे पड़ोसी को दुख नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से मेरे माता पिता को दुख नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से मेरे भाई बहन को दुख नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से मेरे यानी जो कार्यकर्ता कारोबारी है उनको दुख नहीं होना चाहिए, यदि ये एक बात हम लोग सोच और समझ करके यदि जीवन में धारण कर लेते तो परिवार में होने वाले, पड़ोसी के साथ होने वाले टोटल टाइप के झगड़ों का खात्मा है वो हो सकता है। लेकिन हम लोग इन जो साधारण सी बातें हैं, इन साधारण सी बातों का ध्यान न रख करके हम और क्या पता कहां कहां हम लोग पढ़ने चले जाते हैं, क्या क्या पढ़ते रहते हैं। चोरी करना पाप है, बड़ी स्पष्ट सी बात है कि चोरी करना पाप है। चोरी करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी की जेब से बटुआ निकाला तो ही मैं चोर हूं, या मैंने किसी का मोटरसाइकिल चोरी किया तो ही मैं चोर हूं। चोरी का मतलब है कि जो चीज मेरी नहीं है, जो मुझे किसी ने दी नहीं, जो मेरी पारिवारिक संपत्ति से मेरे पास आई नहीं, उसके बावजूद भी यदि मैं उस पर अपना हक जताता हूं तो इसका मतलब है कि मैं चोरी को बढ़ावा दे रहा हूं। मैंने चोरी की है, जो मेरा पैसा नहीं है उस पर भी मैं अपना हक जता रहा हूं, मेरा है ही नहीं, मैंने खरीदा नहीं, मैंने कमाया नहीं, मैंने और कुछ किया नहीं, मेरे पैतृक संपत्ति से आया नहीं, उसके बावजूद भी मैं अपना हक उस पर जता रहा हूं। और उसके बाद मैं कहता हूं कि है तो मेरा ही भाई, सरकार का है तो भी मेरा है। मैं तो ये कहता हूं कि यदि सरकारी जमीन पर हम लोग कब्जा करते हैं तो वो भी एक तरह की चोरी ही है, ये भी बात हम लोगों को समझनी चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, क्या हो गया, सरकार की तो है, मेरी तो है ही। तो इसी तरह से ये बड़ी छोटी छोटी जो बातें हैं, झूठ बोलना पाप है, चुगली करना, वैसे चुगली बड़ी प्यारी चीज होती है, चुगली कानों को बड़ी अच्छी लगती है। जब कोई व्यक्ति दूसरे के बारे में कुछ बताता है तो कहते हैं और बता क्या हुआ, और बता क्या हुआ। लेकिन जिस बात से समाज का भला नहीं होता हो, जिस बात से परिवार का भला नहीं होता हो, जिस बात से पृथ्वी का भला नहीं होता हो, जिस यानी बात से पर्यावरण का भला नहीं होता हो, वो बात है, वो फालतू है। और ऐसी फालतू बातें करके हम लोग अपना टाइम वेस्ट है वो कर रहे हैं। नशे के बारे में कौन नहीं जानता, कहां नहीं कहा गया है कि नशा है वो बुरी चीज है, लेकिन उसके बाद भी नशा है वो बुरी तरह से फैल रहा है। जब यानी और सारे जो पारिवारिक झगड़े हैं उनका सबसे बड़ा कारण नशा है, एक्सीडेंट है उनका सबसे बड़ा कारण नशा है, और अब तो नशे के वजह से सुसाइड कितने हो रहे हैं, कितने जो टाइप के नशे हैं वो चल रहे हैं। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी सामान्य सामान्य सी बातें हैं, जिन बातों पर भी हम लोग अपना ध्यान दे लें, हर राजनीतिक व्यक्ति यदि अपना ध्यान दे ले तो मेरे ख्याल में इस यानी व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। आज राजनीति में अध्यात्म की, धर्म की जरूरत है। धार्मिक आदमी यदि राजनीतिक है तो राजनीति अच्छी हो सकती है, लेकिन यदि राजनीति से धर्म को निकाल दिया जाएगा फिर वो सिर्फ कूटनीति बचेगी, सिर्फ वो सिर्फ फिर सिर्फ बेईमानी बचेगी, फिर सिर्फ भ्रष्टाचार बचेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन बड़ी विडंबना है कि हम लोग अधार्मिक है लेकिन अंधविश्वासी है। हम सुबह कीड़ी नगरे सींचने से लेकर के शाम को रात्रि जागरण तक सारे काम करते हैं, लेकिन झूठ बोलने से कोई यानी हमारे मन में शंका पैदा नहीं होती। बेईमानी करन बड़ी आसानी से कर लेते हैं, धोखा बड़ी आसानी से दे देते हैं, और यानी इस तरह के काम हम लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो यदि हम लोगों को नैतिक मूल्यों में जब तक हमारा सुधार नहीं होगा, और राजनीतिक व्यक्ति, मैं तो ये कहता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति समाज में सुधार का एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। जब राजनीतिक व्यक्ति जब अच्छा होगा तो नीचे जो व्यवस्था है वो ऑटोमेटिक है, वो सुधर जाएगी, क्योंकि देश की बागडोर राजनीतिक व्यक्तियों के हाथों में ही होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री बने, चाहे वो राष्ट्रपति बने, चाहे वो राज्यपाल बने, चाहे वो मुख्यमंत्री बने, चाहे वो मंत्री बने, चाहे वो एमएलए बने, चाहे वो जिला प्रमुख बने, यानी प्रजातंत्र के अंदर जो बागडोर है वो राजनीतिक व्यक्ति के हाथ में होती है। इसलिए राजनीतिक व्यक्ति को है वो अपने नैतिक मूल्यों का जरूर है वो ध्यान रखना चाहिए। यदि राजनीतिक व्यक्ति आध्यात्मिक मूल्यों का ध्यान रखता है, नैतिक मूल्यों का ध्यान रखता है और अपने आप को नैतिक मूल्यों पर चलाता है, तो मेरे ख्याल में उसका कार्यकर्ता भी, उसके नीचे बनने वाली टीम भी उसी तरह का व्यवहार उसके साथ है वो रखेगी। लेकिन यदि राजनीतिक व्यक्ति को जब वो चोरी करते देखता है, जब वो भ्रष्टाचार करते देखता है, जब वो बड़े यानी उसके पास थोड़े से दिनों में बहुत पैसे वाला बनते हुए देखता है, तब उसे लगता है कि जब इन्होंने ऐसा किया है तो फिर राजनीतिक जो कार्यकर्ता है वो सोचता है कि जब चुनाव आया है तो फिर मैं भी थोड़ा सा क्यों न कर लूं, जब इन्होंने इतना किया है तो फिर मेरे को थोड़ा सा करने में दिक्कत कहां है, मैं फिर चोरी कहां कर रहा हूं। तो इसलिए हर एक राजनीतिक व्यक्ति को आध्यात्मिकता पर, धार्मिकता पर और नैतिक मूल्यों पर विशेष ध्यान दे तो इस देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। आप लोग इस बात को महसूस करते होंगे कि पिछले 10-12 सालों में, 15 सालों में हमारे रहन सहन में, हमारे खान पान में, हमारे व्यवहारिक में, हमारी सामाजिकता में गिरावट आई है। और यदि गिरावट आई है तो उसका कोई न कोई कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें उस गिरावट के बारे में सोचने और समझने की जरूरत है और अपने आप को सुधारने की जरूरत है। आज जो इस कार्यक्रम में मुझे बुला करके जो मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आशा दीदी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम चल रहा है, वास्तव में ही इस तरह के कार्यक्रम हर जो जगह है, हमारे सूरतगढ़ के अंदर भी रानी दीदी ने हमें प्रोत्साहन किया और वहां से जब आपने कहा पिछली बार भी इस तरह का कार्यक्रम था, दीदी मैं आने वाला था लेकिन कोई कार्यक्रम था इसलिए नहीं आ पाया, अब की बार लगभग महीना भर पहले ही मैंने दीदी से कहा कि मैं अब की बार जरूर जाऊंगा और उस कार्यक्रम के अंदर जरूर हिस्सा लूंगा। आज मुझे अच्छा लगा, 2 दिन से यहां हूं तो यह सुनकर के भी, देख करके भी अच्छा लगा कि आज कोई तो है जो देश की चिंता कर रहा है, कोई तो है जो इस देश के नैतिक मूल्यों की चिंता कर रहा है, कोई तो है जो इस देश के अंदर नैतिक मूल्यों के अंदर जो गिरावट आ रही है उनकी चिंता करके उनमें सुधार के लिए प्रयास कर रहा है। जो कल दीदी ने जो कहानी बताई थी चिड़िया वाली, तो कोई तो है जो उस वो चिड़िया बन करके इस तरह का इस देश को बचाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। ओम शांति।
श्री डूंगर राम गेदर जी ने बहुत ही सुंदर विचार अपने प्रस्तुत किए और अपनी जीवन की प्रैक्टिकल धारणा के आधार से जो बातें बताई ना, जिसका हम सब पर बहुत सुंदर प्रभाव है। और सच में व्यवस्था जो है ऊपर से नीचे की ओर आती है और ऊपर अगर हम सब अपने प्रयास करें तो इस संसार के अंदर एक सुंदर संसार निर्माण के कार्य में हम अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी मुझे यहाँ पर याद आती, जिसमें एक दादाजी थे, एक अखबार पढ़ रहे थे जिसमें वर्ल्ड मैप था और वर्ल्ड मैप में सारे कंट्रीज के नाम पढ़ रहे थे वो, और वो सारे नाम बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे थे उन्हें। उनका पोता सामने ही खेल रहा था और जो बहुत जोर से हवा आई तो वो पेपर उनके हाथ से उड़ गया और कांटों में जाकर फंसकर टुकड़े टुकड़े, जब निकालने गए तो टुकड़े टुकड़े हो गया। अब दादाजी को वो वर्ल्ड मैप देखना था तो जोड़ने लगे। काफी समय उन्होंने प्रयास किया, वर्ल्ड मैप जुड़ नहीं रहा था। तो दादाजी को स्ट्रगल करते हुए देख पोता आया और कहा कि दादाजी क्या हुआ? तो कहते ये दुनिया ठीक कर रहा हूं, ठीक नहीं हो रही ना? तो दादाजी के हाथ से कहा कि दादाजी मैं हेल्प कर दूं। उसने सारे टुकड़े लिए दादाजी से और 2 मिनट में वर्ल्ड मैप ठीक करके दे दिया। दादाजी बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हुआ, मैं कितने समय से मेहनत कर रहा हूं लेकिन दुनिया ठीक नहीं हो रही थी, तुमने 2 मिनट में कैसे कर दी? कहते दादाजी आप जब पढ़ रहे थे तो आपके सामने तो वर्ल्ड मैप था लेकिन उसके पीछे एक इंसान का पिक्चर था, उस इंसान के पिक्चर को मैंने जोड़ दिया तो वर्ल्ड मैप अपने आप ठीक हो गया। तो ऐसे ही जो भाई साहब ने आज अपना वक्तव्य स्पष्ट किया कि अगर हम सब अपनी अपनी एक जिम्मेवारी ले ले कि हम सत्यता की राह पर चलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हम नैतिक मूल्यों के साथ चलेंगे तो ये संसार को, इस समाज को बदलने में देर नहीं लगेगी। तो ऐसे सुंदर विचार हम सब आज सुन रहे हैं और इससे अपने जीवन में परिवर्तन लाने का हर एक लक्ष्य भी ले रहे होंगे। तो आज के विशिष्ट अतिथि हमारे बीच उपस्थित है श्री विनोद सुयाल जी, जिनको मैं आमंत्रित करती हूँ। श्री विनोद सुयाल जी जो उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और आप उत्तराखंड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी हैं तथा इससे पूर्व जिला सरकारी बैंक टिहरी गढ़वाल के पूर्व निदेशक, भाजपा टिहरी के पूर्व जिला अध्यक्ष और उत्तराखंड भाजपा के दो बार प्रदेश प्रवक्ता आप रह चुके हैं। वर्ष 2015 से आप ब्रह्म कुमारी के संपर्क में हैं और आकर सेवा, शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक मूल्य से आप जुड़े हुए हैं। आज आपके भी सुंदर विचारों से हम सभी लाभान्वित होंगे, तो नम्र निवेदन है विनोद सुयाल जी से कि आप भी अपने सुंदर विचारों को प्रस्तुत करें।
ओम शांति। आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित और कार्यक्रम भी ऐसा जिसमें सभी राजनेता हों जो समाज को दिशा दिखाने वाले हों, ऐसे सत्प्रयास के लिए मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान का आभार व्यक्त करता हूं कि वास्तव में जिसकी आज अत्यंत आवश्यकता थी उसके लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर उपस्थित बहन बीके आशा जी, निदेशिका ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम, हमारे बीच में उपस्थित हम सबके मेरे आदरणीय और उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य, वन, भाषा और इस तरह से छह विभागों के मंत्री लगभग 1982 से 18 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया और स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा जी की प्रेरणा से जिन्होंने राजनीति प्रारंभ की, अनेक राजनीतिक दलों में रहने के बावजूद भी आपने अपने जीवन का मंत्र जन सेवा का बनाया। आज उत्तराखंड के घर घर, गांव गांव में सुबोध उनियाल एक ऐसा नाम है जिनके दरवाजे सुबह 6 बजे से और रात के 2 बजे तक जनता के लिए खुले रहते हैं और हर समय जनता की समस्याओं में संलग्न रहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता इसलिए है कि आज हमारे बीच में है क्योंकि मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान से लगभग 2015 से संपर्क में आया और इस कारण से मैंने आपसे आग्रह किया था कि आप अवश्य इसमें आए, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे माननीय विधायक जिनका उद्बोधन अभी हमने सुना, और वास्तव में राजनीतिक दल की सीमा से ऊपर उठकर जिस तरह से उनका उद्बोधन था वो काफी प्रेरणादायक था, ऐसे आदरणीय श्री डूंगरराम गेदर जी हमारे बीच में उपस्थित जिन्होंने बहुत ही सुंदर अपनी भावना प्रकट की, विधायक श्रीमान रविशंकर जी हमारे बीच में उपस्थित जिनके सानिध्य में और जिनके मार्गदर्शन से मुझे ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। हरियाणा के निवासी होने के बावजूद भी उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में और इतनी बड़ी अवस्था में वहां के दूर छोर के पहाड़ों पर वहां पर शिव बाबा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने वाले ऐसे हमारे भ्राता बीके मेहरचंद जी हमारे बीच में उपस्थित, जिनका अभी हमने सुंदर नृत्य देखा हमारी छोटी बहन कुमारी दृष्टि, और इस मंच का सुंदर संचालन कर रही हमारी बहन फाल्गुनी जी, मेरे साथ आए हुए उत्तराखंड से हमारे बहुत ही प्रसिद्ध समाजसेवी दिनेश चमोली जी, एक बार दिनेश चमोली जी के जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारे बीच में उपस्थित हमारे उत्तराखंड के बहुत ही ईमानदार व्यवसायी सुनील उनियाल जी और हमारे साथ उत्तराखंड से आई बहन सरिता जी। निश्चित रूप से 2015 से पहले मेरा राजनीतिक जीवन भी एक अस्थिरता और आज के जमाने में जिस तरह की राजनीति थी उसी राजनीति के रूप में प्रारंभ हुआ था। किंतु ब्रह्म कुमारी के संपर्क में आने के बाद मैं ये तो नहीं कहता हूं, राजनीतिक क्षेत्र में रहता हूं, काजल की कोठरी है, किंतु फिर भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं उन सभी का जिन्होंने मुझे इससे जोड़ा, उन बहनों का भी, उससे काफी परिवर्तन आया। और आज उस प्रेरणा से मेरी जो धर्मपत्नी है वो भी नित्य इनसे जुड़ी हुई रहती है। इसलिए वास्तव में ब्रह्म कुमारी एक ऐसा संस्थान है जब जीवन में हर क्षेत्र में निराशा दिखाई दे तो ब्रह्म कुमारी में आके ऐसा लगता है कि जीवन समर सकता है, जीवन सुधर सकता है, जीवन को एक नई राह मिल सकती है, जीवन को एक दिशा मिल सकती है, जीवन अच्छा हो सकता है। उसी तरह से यहां पर राजनीतिक क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, कोई किसी पदों पर होंगे, कोई पूर्व में होंगे, कुछ राजनीति में रुचि लेते होंगे। आज हम जिस निराशा के भाव से बात कर रहे हैं मुझे लगता है उसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने में परिवर्तन करके और इस दिशा में किस तरह के प्रयास कर सकते हैं। आज जो मैं महसूस कर रहा हूं वो सबसे बड़ा प्रदूषण अगर कोई है तो डिजिटल प्रदूषण है, और उस डिजिटल प्रदूषण का कारण ये बना, उसने राजनीति पर भी असर डाला है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम सब यहां से आज एक संदेश लेकर जाएं। हमारे जो सुबोध उनियाल जी हैं अभी उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा एक 4 मंजिला 55 फुट का शिवलिंग जो गंगोत्री हाईवे है उस पर बनने जा रहा है। क्योंकि मैं उत्तराखंड की धरती से आता हूं और उत्तराखंड तो वैसे भी आध्यात्मिक धरती है, धार्मिक धरती है। हमारे यहां तो उत्तराखंड में जो दूरस्थ क्षेत्र पहाड़ के गांव थे वहां इतनी नैतिकता थी, ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, ये मेरे पिताजी के जमाने था कि हमारे घरों में ताले लगाने गाली माना जाता था, किसी भी गांव में ताले नहीं लगते थे। इतनी नैतिकता के आधार पर उत्तराखंड में हम रहते थे। नैतिक मूल्यों को भी हम सबको ही बनाना होगा। हमारी ये बहनें हैं जो, इन सबसे भी हमको प्रेरणा लेनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इतना बड़ा संस्थान है कि संस्थान के अंदर मैं देखता हूं लगभग 90% बहनें ही इसमें काम करती है। कई बार ऐसा लगता है कि नैतिकता का पाठ जैसे इन बहनों ने ही बीड़ा उठा रखा हो, हम भाइयों का इसमें कोई योगदान न हो। इसलिए मैं आप सब भाइयों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप हम भी इस समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए, और राजनीतिक क्षेत्र हो अन्य क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्रों में आगे ले जाने के लिए हम भी सब प्रयास करें। और निश्चित रूप से जिस तरह से मैं उत्तराखंड के अंदर आज वातावरण देख रहा हूं, जिस तरह से वहां पर ब्रह्म कुमारी का बहुत व्यापक रूप से, क्योंकि वहां पर भी पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ की कई सारी कुछ अच्छाइयां भी हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं। वहां पर नशा मुक्ति के जो कार्यक्रम वहां पर प्रारंभ किए गए ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा और उत्तराखंड सरकार के साथ भी एक एमओ साइन किया है, उसके भी अच्छे परिणाम वहां पर नजर आ रहे हैं। बहुत सारे नौजवान जिनकी राजनीतिक, जिनका जीवन की दिशा भटक चुकी थी, जिन्हें मैंने प्रत्यक्ष देखा, वो ब्रह्म कुमारी के संपर्क में आने से उनका जीवन सुधरा है। तो निश्चित रूप से आप सब यहां पर आए हैं, सभी कोई किसी राजनीतिक दल से होगा, कोई किसी संस्था से होगा, लेकिन है तो हम सब देश के लिए। और वास्तव में जैसा अभी पूर्व विधायक बीके मेहरचंद जी ने कहा कि राजनीति में धर्म का और आध्यात्म का होना बहुत जरूरी है, तभी राजनेता डरेगा, चाहे वो बाबा से डरेगा या समाज से डरेगा, और तभी वो नैतिक मूल्यों पर रह सकता है। इसलिए शिव बाबा के प्रति जब हमारे मन में गहरी आस्था होगी तो निश्चित रूप से किसी भी अनैतिक काम को करते समय हमें सबसे पहले ये भी स्मरण आएगा कि हम उसकी संतान हैं, और जब हम उसकी संतान बन जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा जिन जिन क्षेत्रों से भी आप सब आए हैं, निश्चित रूप से ब्रह्म कुमारी संस्थान के संपर्क में आने से जीवन में बदलाव आता है, जीवन में एक सुकून शांति और एक अमन चैन, जैसा भी डूंगर राम जी ने बताया, ये सब चीजें यहां पर हम सबको 3 दिन से आप भी महसूस कर रहे होंगे, जो लोग 3 दिन से लगातार हैं कि यहां का वातावरण देखकर, यहां की फिजाओं में कुछ अलग ही रस है, यहां अगर ऐसा लगता है कई बार कि यहीं बैठ जाए, यहीं रुक जाए, यहीं ठहर जाए, लेकिन फिर भी चलना है। और यहाँ का इस वातावरण में इसका कारण है इन पवित्र बहनों के द्वारा की हुई तपस्या, शिव बाबा की कृपा, शिव बाबा का आशीर्वाद और आप सबका स्नेह प्रेम। यहाँ के जो हमारी भावना है एकदम स्नेह प्रेम की तरफ बढ़ जाती है, जैसे हम इस परिसर के अंदर आते हैं एक अलग सा भाव हमारे अंदर शुरू हो जाता है। जैसे वो भाव कंटिन्यू शिव बाबा हमारे मन में रखे, जब हम यहाँ से बाहर जाएं तो निश्चित रूप से दुनिया एक सुनहरी दुनिया होगी, एक बढ़िया दुनिया होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सुयाल जी का, आपने अपने सुंदर विचार हमारे समक्ष रखे और हमें फिर से अंडरलाइन कराया कि स्व परिवर्तन, सेल्फ के ऊपर वर्क करने से ही हम इस अपने भारत देश को आगे भी बढ़ा सकते हैं और समाज में श्रेष्ठ परिवर्तन भी ला सकते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि सुबोध उनियाल जी, श्री सुबोध उनियाल जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, जो हमारे ना बीच उपस्थित हुए हैं आज। श्री सुबोध उनियाल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं तथा वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में संसदीय कार्य एवं वन मंत्री के रूप में कार्यरत है तथा उत्तराखंड राज्य फुटबॉल एसोसिएशन के आप अध्यक्ष भी हैं। उन्हें 2017 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव तथा 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव टिहरी गढ़वाल जिले की नरेंद्र नगर विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित किया गया है। और जैसे हमने आपके बारे में सुना, कैसे कर्मठ आप सवेरे से लेकर रात्रि तक अपनी सेवाएं समाज के उत्थान के कार्य में लगाते हैं, तो ऐसे सुंदर अनुभवी आत्मा हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपके भी प्रेरणा शब्द सुनेंगे श्री सुबोध उनियाल जी।
बोले भारत माता की, जब जोर से हो जाए भारत माता की। आप सबको प्रणाम करते हुए मैं ब्रह्म कुमारी संस्था का आभारी हूं कि जिन्होंने इस सुंदर वातावरण में आने का अवसर दिया और इस अवसर पर इस कार्यक्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय बीके आशा जी जो निदेशिका हैं ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम की। इस कार्यक्रम में हमारे सूरतगढ़ राजस्थान के विधायक जी ढूंगर राम गेंदर जी और कर्नाटक से आए हुए सम्मानित विधायक रविशंकर जी हमारे सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, सम्मानित विनोद सुयाल जी, हमारे आदरणीय बी के मेहरचंद जी जो राष्ट्रीय समन्वयक हैं और जोन समन्वयक राजनीतिक प्रभाग पंजाब के, सम्मानित श्रीमती सुमिता मलिक जी जो दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव हैं और कार्यक्रम का संचालन कर रही है बीके फाल्गुनी जी और हमारे साथ आए हुए सम्मानित दिनेश चमोली जी, सुनील उनियाल जी, यहाँ पर सभी ब्रह्म कुमारी संगठन से जुड़े हुए सम्मानित उपस्थिति। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, दो तीन बात वो कहूंगा। अभी डूंगाराम जी ने कहा कि मैंने शादी नहीं की कि ताकि कोई आरोप न लगे परिवारवाद का। मुझे नहीं लगता कि परिवारवाद का आरोप से बचने के लिए शादी नहीं करनी चाहिए। मेरे दो बेटे और एक बेटी हैं और मैंने खुलेआम कहा कि मैं राजनीति में अपने खानदान से पहला हूं और अंतिम हूं। इसके लिए कोई संदेश शादी नहीं की कला एडॉप्ट भी कर सकते हैं, किसी को कहते तो राजनीति में तो कई उत्तराधिकारी बन जाते हैं, लेकिन राजनीति में जो आवश्यकता है, देखिए पहली चीज तो राजनीतिक व्यक्ति आता कहां से, राजनीतिक व्यक्ति इसी समाज से आता है, कोई बाहर से नहीं आया। राजनीतिज्ञों के अंदर आत्मिक मूल्यों के लिए के प्रति सम्मान हो इसके लिए आवश्यक है कि समाज के अंदर भी आत्मिक मूल्यों के लिए समाजों की, समाज ही राजनीतिक को पैदा करती है। अब भारतीय तो लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में राजनीतिज्ञों के अस्तित्व को बनाने का काम आम आदमी करता है, जनता करती है। आज मुझे 2002 से विधायक बनने का अवसर मिला और ऐसे क्षेत्र से विधायक हूं जहां पर 62% ठाकुर है और 20% ब्राह्मीण है और मैं ब्राह्मीन हूं। लुंगर जी, 62% ठाकुर मेरी विधानसभा में, 20% ब्राह्मीण है, मैं उस क्षेत्र से 2002 से विधायक हूं। तो ये राजनीति में जातिवाद को, मुझे एक याद है मेरे एक मुख्यमंत्री थे, मेरे उनके साथ अच्छे संबंध नहीं थे, हम लोग दोनों हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे थे तो मुख्यमंत्री जी मुझसे पूछे कि सुबोध जी, इस प्रदेश में सबसे ज्यादा ठाकुर आपकी विधानसभा में है। मैं कहा भाई ये तो मुझे नहीं मालूम था सबसे ज्यादा ठाकुर मेरी विधानसभा में, पर इतना मालूम है कि मेरे यहां 62% ठाकुर है और 20% ब्राह्मीण है। तो मुख्यमंत्री के मुंह से सडनली निकल गया तभी तो, क्योंकि मुख्यमंत्री ठाकुर थे तो उनके मुंह से निकला तभी तो। मैं क्या, बड़ा आश्चर्य हो रहा है आपको कि मैं 62% ठाकुरों के रहने के बावजूद 20% ब्राह्मण होने के बावजूद चुनाव कैसे लगातार जीत रहा हूं। मगर लोग जातिवादी नहीं है। अगर राजनेता विकासवादी सोच के साथ काम कर रहा हो तो जातिवाद अपने आप समाप्त हो जाता है। आज देश के अंदर मोदी जी की जात के कितने लोग हैं, कितने लोग हैं रविशंकर जी? राजस्थान में ब्राह्मण कितना परसेंट है? देखिए कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन है विकासवाद के प्रति लोगों का झुकाव। और आत्मीय मूल्य, सबसे बड़ी आवश्यकता आदमी मूल्य के लिए है कि आम आदमी को गॉड फियरिंग होना चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो, उसको परमात्मा का डर होना चाहिए। मैं समझता हूं परमात्मा का डर ही आपको आत्मीय मूल्यों के प्रति समर्पण की भावना देता है। अगर आपको अपने ईष्ट का डर नहीं है तो आप आत्मीय मूल्य के प्रति आप कभी भी समर्पित हो ही नहीं सकते। पहला आवश्यकता है गॉड फियरिंग होना। और दूसरा, मैं आपको, मैं इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं देख रहा हूं बड़े लंबे लंबे आप लोगों ने बातें सुने, कहीं ना कहीं आपको भी जाने की बात होगी, लेकिन जिंदगी में मुझे 3 लाइनों ने बड़ा प्रभावित किया। वो थी कि आपके पास कोई भी व्यक्ति 3 कारणों से आता है। पहला कारण है भाव। अब जैसे आजकल हम लोग अब चुनावी मोड में आ गए, हमारे राज्य में इस साल के अंतिम में या अगले साल की शुरुआत में चुनाव होना है, तो समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे पास पार्लियामेंट्री अफेयर का विभाग भी है, मेडिकल एजुकेशन भी है, मेडिकल हेल्थ भी है, फॉरेस्ट भी है, और हमारा राज्य ऐसा राज्य है जहां 72% फॉरेस्ट कवर्ड एरिया, 72% मतलब टोटल एरिया इन माई स्टेट इज फॉरेस्ट कवर्ड। समय निकालना मुश्किल था, लेकिन एक भाव जो ब्रह्म कुमारी संस्थान के प्रति बना, वो भाव मुझे यहां खींच लाया। तो भाव 3 कारणों से आपके आदमी आते हैं। भाव, अभी मैं प्रभाव में नहीं आया, ना अभाव में आया हूं, अभी भाव में आया हूं। 3 कारण जीवन में आपके पास कोई आदमी आता है, भाव, अभाव और प्रभाव। भाव का मतलब आपके प्रति आत्मीयता का एक सोच, आपके प्रति एक लगाव। तो अगर कोई आपके पास भाव से आया तो थोड़ा भाव आप भी उसको दे दोगे तो आपके खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। और अगर अभाव में आया है तो ये नहीं कि आप अपनी कुटिया को बेच दें या कहीं से कर्जा लेके उसको मदद कर दें, यथाशक्ति जो आप कर सकते हैं उसकी मदद करने का काम करें। और अगर आपके पास प्रभाव में आया है तो उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद दें जिसने आपको इस लायक बनाया कि कोई व्यक्ति आपके प्रभाव में आपके पास आ रहा हो। तो भाव, अभाव और प्रभाव को अगर आपने अपने अनिहित कर लिया आत्मा में तो निश्चित मान लीजिए आत्मीय मूल्यों का समाज बन जाएगा। और अगर इन मूल्यों के प्रति आपके अंदर समर्पण नहीं है, तो आप लाख सेमिनार करिए, लाख भाषण दीजिए, कभी कुछ नहीं होने वाला। ये मैन टू मैन भी डिपेंड करता है। इसलिए समाज में राजनीति के लोगों को भविष्य को बनाने का काम जनता करती है। जब तक समाज के अंदर अपने मूल्यों के प्रति समर्पण नहीं आएगा, मैं नहीं समझता कि राजनीति की व्यवस्था सुधर पाएगी। राजनीति और ब्रह्म कुमारी, जैसे आज मुझे बड़ा शुभ अवसर मिला, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ऐसी दिव्यात्मा के दर्शन होंगे। इनकी डायरेक्टर सुदेश माता जी से मुझे मिलने का अवसर मिला और इस उम्र में जिस तरह से वो एक ऐसी ज्ञान देने का काम कर रही थी, जो ज्ञान निश्चित रूप से अगर आदमी बैठ जाए तो मैं समझता हूं उसके पूरे जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो संगत और सोसाइटी, इसका बहुत बड़ा प्रभाव आदमी के जीवन पर पड़ता है। हम अच्छे वातावरण में रहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी बातें ग्राह्य करने का हमें अवसर मिलेगा। हमें जो वातावरण में सुगंध है, जैसे इस आश्रम में घुसने के बाद ये जो माहौल दिखता है, ये माहौल कहीं ना कहीं आदमी के जीवन में परिवर्तन का ही, मैं समझता हूं, एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। तो वातावरण आपके जीवन में किस तरह बदलाव लाए, मुझे विनोद सयाल जी की तो मैं देखा हूं, बिल्कुल मैंने स्वयं देखा है इनके जीवन में बदलाव को आते हुए, बड़ा बदलाव इनके जीवन में आया। तो ये बदलाव का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके अंदर समर्पण की भावना पैदा हुई। अगर आपके अंदर समर्पण की भावना नहीं है, मैं बच्चों के बीच में जाके कहता हूं कि बच्चों, दुनिया का कोई लक्ष्य, दुनिया यहां राजस्थान का नहीं, उत्तराखंड का नहीं, देश का नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको इंसान प्राप्त न कर ले, कोई ऐसा टारगेट नहीं। और आप लक्ष्य निर्धारित करिए, लक्ष्य निर्धारित करके आपके अंदर तीन बातें होनी चाहिए, अनुशासन, सकारात्मकता और रचनात्मकता। आज सकारात्मक माहौल बनाने के लिए जिस रचनात्मकता की भावना के साथ आपका ब्रह्म कुमारी संस्थान काम कर रहा है, तो एक वातावरण बना करके शुद्ध वातावरण को शुद्ध करने का जिस तरह वो काम कर रहा है, इसी तरह अगर आम बच्चा एक लक्ष्य निर्धारित करे, लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना हो, अनुशासित हो, सकारात्मकता हो, रचनात्मकता हो, तो दुनिया का कोई लक्ष्य इंसान की हिम्मत से बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर इंसान लक्ष्य न बनाता तो इंसान चांद पर नहीं पहुंचता। 1968 में मुझे आज एक वाशिंगटन पोस्ट में एक छोटी सी पोस्ट, एक छोटा सा फोटो आया था, एक महिला के हाथ में कागज मोबाइल जैसा एक खिलौना रखा था, उसने कहा, मैं विश्वास करती हूँ कि भविष्य में एक बार आएगा कि मैं गाड़ी में बैठ के बात करूंगी। तो इंसान ने कहीं ना कहीं लक्ष्य निर्धारित किया और आखिर 1995-96 के आसपास मोबाइल की उत्पत्ति हुई। हम लोग उस जनरेशन के लोग हैं जब टेलीफोन टक 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 दबाते थे तो टेलीफोन एक्सचेंज में उठाया करता था। तो आदमी ने लक्ष्य बनाया, लक्ष्य के प्रति बढ़ा और आगे बढ़ा। तो आज समाज को बनाने के लक्ष्य को लेकर के जब तक समाज नहीं बनेगा तब तक राजनीति के लोगों में आत्मीय मूल्यों की उम्मीद करना बेमानी होगा। समाज में बच्चों के, समाज ही नेता को जन्म देता है। राजनेता समाज से आता है, राजनेता ऊपर से नहीं आता। तो जब समाज में बहुमत आत्मीय मूल्यों के प्रति समर्पणधारियों का होगा तो एक अच्छे नेता का जन्म होगा, और जब अच्छे नेता का जन्म होगा तो राजनीति में निश्चित रूप से मूल्यों के प्रति एक समर्पण की भावना के साथ, देश को आगे बढ़ाने की भावना के साथ, कल्याण करने की भावना के साथ, एक विकासवादी सोच के साथ जब राजनीति काम करेगा, क्योंकि उसको भी चिंता होगी अपने अस्तित्व की कि ये समाज सुधरा हुआ समाज है, इस समाज में आत्मीय मूल्यों के प्रति समर्पण का समाज है, इस समाज में विकास के प्रति एक भावना का वाला समाज है, तो वो निश्चित रूप से अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पण की भावना से काम करके जब आगे काम करेगा तो निश्चित रूप से स्वच्छ स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। और मैं समझता हूँ जो हमारा देश है, जो कभी, क्योंकि हमारी एक ऐसी संस्कृति है जो अकेली संस्कृति है, मुझे जो दुनिया में 70 देशों में जाने का अवसर मिला, जो कहती है विश्व का कल्याण हो। कोई दूसरा धर्म नहीं कहता, कोई दूसरी संस्कृति नहीं कहती हमारी भारतीय संस्कृति के अलावा कि विश्व का कल्याण हो। कोई दूसरी संस्कृति नहीं कहती वन अर्थ वन फैमिली, दुनिया पूरी दुनिया एक परिवार है। कोई दूसरी संस्कृति नहीं कहती विश्व में शांति हो। तो हम उस संस्कृति से निकले हुए लोग हैं जो विश्व शांति की बात करती है, हम उस संस्कृति के लोग हैं जो विश्व कल्याण की बात करते हैं, हम उस संस्कृति के हैं जो पूरी दुनिया को एक परिवार मानती है। तो इस संस्कृति से निकले हुए लोगों में कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पण की भावना पैदा करने के लिए मैंने कहा सबसे पहले जो मैं फिर शुरुआत वही पर समाप्त कर रहा हूँ जो मैंने शुरुआत में कहा था, हमें उस परमपिता परमेश्वर चाहे वो किसी धर्म का गुरु हो किसी धर्म का व्यक्ति जब वो अपने ईश से डरेगा तो निश्चित रूप से उस डर में एक स्वच्छ समाज की एक समाज जो वो समाज जो जिसमें मूल्यों के प्रति समर्पण की भावना हो जिसमें आत्मीयता हो अपने अपने आदमी के लिए उस समाज का निर्माण होगा। आप मुझे यहाँ पे बुलाया मैं आशा जी आपको बहुत बहुत आपको और पूरे ब्रह्मपुरी संस्थान को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ धन्यवाद देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आपका संस्थान जिस तरह से एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज बनाने की एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप सबको प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुबोध उनियाल जी का। आपने अपने प्रेरणादायी शब्दों से हमें बताया कि कैसे संघ का बहुत इम्पोर्टेंस होता है और संघ से हम विश्व का परिवर्तन भी करने में योगी बन सकते हैं ना? एक अगेन एक दादाजी अपने बच्चे को कहानी सुना रहे थे और उस कहानी में बच्चे को कह रहे थे कि देयर आर टू वुल्व्स ऑलवेज फाइटिंग इन योर माइंड। तो बच्चे ने क्यूरियोसिटी से दादाजी को पूछा दादाजी हु विंस, तो दादाजी ने कहा द वन टू हुम यू फीड, जिसको आप खिलाते हो वही जीतता है। तो हम सबके अंदर भी अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं लेकिन कौन से विचारों को हम पोषित करते हैं उन्हें आगे बढ़ाते हैं हम वैसे ही समाज का निर्माण करते हैं। तो आपने ऐसे ही सुंदर विचार हमें प्रदत्त किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच हमारी आदरणीय आशा दीदी जी उपस्थित है सेवा अध्यात्म और समर्पण का ज्ञान का जहां पर सम्मिलित अनुभवों की खान हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जो न केवल ओम शांति रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर हैं लेकिन आप इस विद्यालय में पिलर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। बहुत ही छोटी आयु 8 वर्ष की आयु में आप इस विद्यालय से जुड़े और राजयोग का अभ्यास करते हुए अराउंड 70 इयर्स आपको हो गए जो अध्यात्मक शक्ति के साथ आप अपने जीवन से अनेकों को लाभान्वित कर रही हैं। देश विदेश में अनेक आत्माओं को आपने इस अध्यात्म की राह सकारात्मकता की राह चुनने का और उस पे आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान की है। आदरणीय आशा दीदी जी एडमिनिस्ट्रेशन विंग और आईटी विंग की चेयरपर्सन भी हैं और आप अपने ज्ञान से और हमारी इस विद्यालय की एक ट्रेनिंग होती है जिस जो बहनें कुमारियां समर्पित होना चाहती हैं सेवा में उसकी आप ट्रेनिंग टीचर भी हैं जिनको जिसमें अनेक बहनों को ऐसा सुंदर जीवन बनाया जो औरों का समाज कल्याण के कार्य में और आध्यात्मिकता के राह में चलने के लायक बनी। तो दीदी जी के संग रहते हुए हम बहुत कुछ दीदी से सीखते हैं अथक कर्मठ और क्रिएटिविटी की नवीनता की आप देवी हैं और हमेशा हर एक को बहुत ही बल देकर आगे बढ़ाने का आपका हमेशा प्रयास रहता है। आदरणीय आशा दीदी जी से आज के इस विषय पर हम गहन अनुभव युक्त वक्तव्य सुनेंगे और प्रेरणा लेंगे। आदरणीय आशा दीदी जी के आशीर्वचनों से लाभान्वित होंगे हम। आदरणीय दीदी जी
ओम शांति। मैं सोचती हूँ जो पीछे बैठे हैं कठिनाई ना हो तो थोड़ा आगे आ जाए आगे आ जाए। थैंक यू। आप सबको नजदीक से देख सकेंगे ना। आज का बहुत ही प्रबुद्ध बलिष्ठ गौरवशाली मंच जिसमें हर वक्ता एक से बढ़कर एक है और इतने सुंदर विचार हम सब सुन रहे हैं, आप सच सच बताओ, आप सबको अच्छा लग रहा है सुनना? हाँ, किसको अच्छा लग रहा है? अच्छा, जिसके हाथ नीचे में समझो उनको नहीं अच्छा लग रहा। अटल भाई, अच्छा। दूसरा सवाल ये बताओ कि सारी बातें सुनते हुए किस किस के मन में यह आया कि आज से मैं ये काम शुरू करूंगा या शुरू करूंगी? कोई अच्छी बात अपने मन में आपने धारण की हो, सबकी बातें सुनते हुए ऐसा विचार किसी को आया? हाँ, शाबाश, खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इनके लिए ताली बजाएंगे। एक होता है अध्ययन, एक होता है श्रवण, और एक होता है धारण करना। तो सबसे अच्छी बात होती है जीवन में धारण करना। अध्ययन और श्रवण भी कम नहीं है, उनका अपना महत्व है और वो होने ही चाहिए, लेकिन धारणा फिर भी आगे निकल जाती है। बैठे बैठे आप सबकी बातें सुनते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी बातें आई हैं, और मैं सोचती हूँ कि शायद ब्रह्मा कुमारीज का ही एक ऐसा मंच है जिस मंच पर सभी पार्टी के लोग स्वच्छंद और स्वतंत्र रूप से अपने विचार रख सकते हैं। ऐसा है? सुबोध भाई क्या कहेंगे? ऐसा है विनोद भाई? है ही नहीं है, हम तो सेवाधारी हैं। तो ये एक, ये भी अच्छी बात है। फिर मैं सोच रही थी कि ये सारा कार्य करने कराने वाला कौन है, तो श्रीमद् भगवद गीता याद आई। श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा गया कि जब धर्म की अति ज्ञानी होती तो मैं आता हूं, और आकर के मैं पुनः अधर्म का नाश करता हूं, सत धर्म की स्थापना करता हूं। अब वो धर्म से भाव कोई भी किसी एक धर्म से नहीं है, जो धर्म से भाव है वो धारणा से है। जब व्यक्ति के जीवन में धारणाओं की ग्लानि हो जाती है, धारणाएं नहीं रह जाती, परमात्मा कहता है मेरे बच्चे कहलाने योग्य नहीं रह जाते हो, कहते हो मैं परमात्मा के बच्चे, तो मेरा एक दो तो लक्षण दिखाओ। जब बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हो और ये सारी सृष्टि कलयुग की हो जाती है, तो मुझे ही आना पड़ता है, और मैं आकर के पुनः तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे परिवार हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें मैं फिर से सद्बुद्धि देता हूं। क्या सद्बुद्धि देता हूं? आप देखिए राजनीति में आप सबको एक चीज बहुत प्यारी है, बताओ कौन सी है? अब मैं पूछूंगी आप लोगों से, सब राजनीतिक नेताओं को एक चीज बहुत प्यारी होती है, बताओ? प्रशंसा, वो भी अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, मैं एग्री करती हूँ, प्रशंसा भी होनी चाहिए। एक चीज आप सबको बहुत अच्छी लगती है, वो है तिलक, है ना? आप अपनी सेवाओं में जाते हो, आप कहीं भी जाते हो, मंदिर में जाते हो, आप लोगों को तिलक देते हैं तो बहुत खुश होते हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ और 73 से इस क्षेत्र में सेवा करती रही, मैंने अनेकों को आते देखा, अनेकों को जाते देखा। जो चीज मैंने देखी वो भी मैं बताऊंगी, और जो चीज हम कर सकते हैं उस पर भी मैं आपका ध्यान खिंचाऊंगी। ये तिलक जो निशानी है, ये बड़ी शुद्ध चीज मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति तपस्या में बैठता है, यज्ञ में बैठता है, तो उसको तिलक दिया जाता है। यज्ञ क्या है? यज्ञ कोई कुंड का नाम नहीं है। यज्ञ आपके श्रेष्ठ संकल्प का नाम है, जो कलेक्टिव रीति से संपन्न किया जाता है। जब हमारी कलेक्टिवली एक दृढ़ संकल्प वाली मनसा बन जाती है, वही यज्ञ है। उस यज्ञ को हमें सफल करना है। आज परमात्मा ने आकर के रुद्र यज्ञ की स्थापना की है। हे आत्मन, तुमने इस श्रेष्ठ संकल्प से सृष्टि बनती है। अपने संकल्पों को श्रेष्ठ करो, उत्तम बनाओ। जब राजाएं युद्ध के लिए जाते थे तो रानियां तिलक देती थी कि तुम जहां जा रहे हो वहां से हार खा के नहीं आना। विजय का तिलक लगा करके भेजती थी, अब वापस लौटो, विजयी होके लौटो। हमें याद नहीं करना, अपने कर्तव्य कर्म को याद करना। ये स्वमान का तिलक है। तुम कौन हो? तुम राजा हो। राजा माना मालिक। राजा सल्तनत का उसको छोड़ दीजिए, वो हमने खत्म किए हैं हम प्रजातंत्र में। राजा मालिक, जैसे हम शरीर के राजा हैं, ऐसे हम अपने संकल्पों के मालिक हैं, दृढ़ता के मालिक हैं। ये हमें पक्का रखना है, इसलिए ये तिलक है। तिलक तपस्या की निशानी है, तिलक स्नेह की निशानी है, तिलक दृढ़ता की निशानी है। जब कोई दृढ़ संकल्प, क्या कहते थे, अब मैंने ये लहू से तिलक लगा लिया है, जिम्मेवारी की निशानी, विजय की निशानी। वो तिलक हमें किस किस बात की स्मृति दिलाता है। आज जब हम देखते हैं, हमें अपने देश की कितनी अच्छी बात कही, भारत की संस्कृति है जो विश्व के लिए सोचती है, विश्व का कल्याण सोचती है, विश्व में शांति सोचती। क्यों? क्योंकि भारत देश में ही परमात्मा का अवतरण है। भारत सबसे प्राचीन देश है और भारत अविनाशी खंड है जिसका कदापि नाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि परमात्मा की अवतरण भूमि है। यहां परमात्मा अवतरित होकर के अपना कार्य करते हैं, एक परिवार बनाते हैं। उसके लिए कुछ एक बातें जो हमारी इसमें कलयुग है, और कलयुग के लिए कहा जाता है, काजल की कोठरी में काहू ही सयानो जाए, एक ली काजल की लागी पे लागी है। थोड़ी बहुत कालक लगती है। लेग पुलिंग दिखाई देती है, पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं, कौन क्या करता उसको छोड़ दीजिए, लेकिन वो आत्म भाव, ये भी मेरा भाई है, अपनी योग्यता से आगे बढ़ रहा है, वो भाव जो आपने कहा वो हमारा समाप्त हो जाता है। डू और डाई के फॉर्मूले पर आकर के एक दूसरे की जो लेग पुलिंग करते हैं, बुरा ना मानना, ये हमारे भारत देश की कमी प्रसिद्ध हो गई है। कहते एक बार एक उसमें बोगी में, बोगी बोलते हैं एक कार्टन, इसमें बहुत सारे क्रैब्स डाले गए और उनके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया गया और उनको जाना था अमेरिका, तो चले गए, ढक्कन तो लगाया नहीं था, तो किसने कहा ढक्कन तो लगाया नहीं, सारे क्रैब्स तो निकल करके समुद्र में चले जाएंगे, तो खा ले। कहा डोंट वरी, दे आर इंडियन क्रैब्स, एक चढ़ेगा तो दूसरा उसकी टांग खींचेगा। हम राजनीति में अच्छी भावनाओं, देखिए मैं तो याद करती हूँ अपने देश के श्री लक्ष्मी श्री नारायण देवी देवताओं को, राज तो वो भी करते थे ना, वो हमको बनाना और बनेगा अगर हम सबके मन के अंदर इतने अच्छे भाव पैदा हो रहे हैं, तो ये भाव खाली जाने वाले नहीं है, ये भाव इसी धरा पर इसी देश में पुनः ऐसी संस्कृति, राज संस्कृति लाएंगे और हमें खुशी होगी कल की चिड़िया की तरह कि उसमें हमारा भी थोड़ा सा योगदान था, हम सब ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। दूसरी बात मुझे याद आ रहे थे अपने देश के महान नेताएं, स्वमान, एक चीज सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान बहुत बड़ी चीज है। हमारे महात्मा गांधी जी पढ़े लिखे थे, प्रैक्टिस करें, क्या किस चीज की कमी थी उनको, किस चीज, वेल एजुकेटेड थे, लेकिन उनके स्वमान पर प्रहार हुआ तो उनके अंदर से वो स्वतंत्रता की अग्नि जागृत हुई, निस्वार्थ भाव से उन्होंने किया, अकेले नहीं सारे देश को अपने साथ लिया, अन्य देश में उनके साथ सहमति के रूप से थे। मैं मानती हूं समय बदलता है, प्यारे भाई बहनों ये याद रखना, समय बदलता है, मूल्य नहीं बदलते। ऑनेस्टी पहले भी वही थी जो आज, 100 साल पहले भी ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, आज भी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। प्रेम उस समय भी था और आज भी प्रेम के बल से हम बहुत कुछ कर लेते हैं, मूल्यों का हनन नहीं होता, मूल्य वही रहते हैं, हमारी धारणा में फर्क। सत्यता, अहिंसा, प्रेम जो गांधी जी ने लिए उस समय के लिए, आज भी वो उतना ही सत्य है, हम उसकी धारणा करें। तीसरे, लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी आप जानते निस्वार्थ, और जब अपने देश को अमेरिका ने गेहूं देने समय उपहास किया था, शास्त्री जी ने क्या कहा था, सारे देश को अपने साथ इकट्ठा कर लिया, हम सोमवार शाम के दिन व्रत रखेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम वो अनाज बचाएंगे, और हमने अपने देश को उस लेवल पर ले आया। ये हम सब की संगठित रूप का प्रभाव था। इसी रीति से सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष कहते हैं, उन्होंने दृढ़ता के बल से, प्यार के बल से, दृढ़ता के बल से सारे देश को एक कर दी, सारी प्रिंसली स्टेट्स को खत्म कर, आज डिमांड किस बात की, ऐसी अच्छी बातों की धारणा करने की। और ये बातें मैं कहूंगी कि सेवा भाव आप सबके अंदर बहुत है। एक चीज होती है एम्पथी। मुझे उस समय यंग थे तो कभी कभी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, सारी जनता बैठी है प्रतीक्षा कर रहे हैं नेताजी की, और नेताजी पिछले द्वार से बाहर चले गए और सारी की सारी जनता बैठी है। उस समय धक्का लगता था, कोई मजबूरी होगी। लेकिन आप जो यहां बैठे हो, आज आप लोगों ने जो अच्छी बातें बताई हैं, हमें लोगों के दिलों को जीतना है। मुझे इमरजेंसी है, जनता मेरे साथ है, मैं आकर के एक मिनट क्षमा लेकर के जा भी सकती हूं, और पब्लिक मना नहीं करेगी, पब्लिक आपका साथ देगी। पब्लिक चाहती है ट्रांसपेरेंसी हो, पब्लिक चाहती है ट्रूथफुलनेस हो, पब्लिक चाहती है आप हमें समझें, एम्पथी हो। छोटी सी कहानी याद आती, कहानी नहीं है, सच्चाई है। अपने देश में जब राजा राजकुमार को गद्दी पर बैठने के लिए तैयार करता था तो गुरु के पास भेजा करता था जंगल में, जहां उसको शिक्षा मिलती थी। एक बार एक राजकुमार को शिक्षा देने के पश्चात मंत्री लोग आए वापस ले जाने के लिए, मैं शॉर्ट में सुना रही हूं कि अब इसकी शिक्षा पूरी होगी राजकुमार की, गुरु ने मना कर दिया। गुरु ने कहा अभी पूरी नहीं हुई है शिक्षा, अभी इसको और लगेगा टाइम। कितना टाइम वो बता दिया, एक महीने बाद आना। उस एक महीने में गुरु ने उस राजकुमार के साथ खूब बुरा बर्ताव किया, जी भर करके बुरा बर्ताव किया, उसको खाना नहीं देते थे, उसका उपहास करते थे, बहुत कुछ किया, मारा भी। एक महीने के बाद जब मंत्री आए लेने के लिए राजकुमार को, तो राजकुमार की हालत देख करके हैरान हो गए, ये राजकुमार को क्या हो गया। गुरु ने कहा ये मैंने किया, मैंने इसे खाना भी नहीं दिया, मैंने इसका खूब उपहास किया, मैंने इसको खूब सताया और मैंने इसको मारा भी। क्यों? कल जब ये राजा बनेगा और किसी के साथ अन्याय होगा, वो पूछता था आप मुझे क्यों मार रहे हो, गुरु जवाब नहीं देता था। जब अन्याय करेगा तो इसको पता होना चाहिए दूसरे के दिल पे, उसके जीवन पे क्या गुजरती है। एम्पथी, दूसरे को समझ सकना। मैं ये नहीं कहती हूं समय बदला हुआ है, चीजें बदल गई हैं, लेकिन एम्पथी तो नहीं गई है ना। एम्पथी तो वही है, एम्पथी माना दूसरे के पोजीशन पे आकर के देखना, वो तो वही चीज है ना, वही मूल्य है। इसी रीति से हमारे देश में बीडी जत्ती जी हैं कर्नाटक, हम उनसे मिलने गए, हमारी सिल्वर जुबली थी बैंगलोर की। इतने सिंपल उनकी रहाइश, इतनी सिंपल। उन्होंने कहा, बोले हमने इनवाइट कर कहा मेरे पास स्टेनोग्राफर नहीं है तो जवाब दे आदि कुछ नहीं। उनके मुंह से निकला कि कहीं मैंने ईमानदार रह करके गलती तो नहीं कर ली, सारी उम्र में ईमानदार रहा, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर ली। तब उन्हें हमारे आदरणीय ब्रिजवान भाई थे तो उन्होंने उनसे बातचीत की, समझाया और उनके मॉडल को अप किया कि आपका उदाहरण देते हैं और आपके नाम से कितनी चीजें चल रही, आपकी नहीं है आपके नाम से चल रही हैं, इससे बढ़िया बात हो। इसलिए मेरे पास एक रुपया भी ना हो लेकिन अगर आज हमारे, मैं बताना चाहूंगी हमारे बाबा लखी बाबू जिनका नाम आज कलकत्ता में लखी बाबू के नाम से बीसियों दुकानें हैं, एक दुकान बाबा की नहीं है उनके नाम से है। तो आपका नाम काम करता है, आप जो उदाहरण पेश करते हैं, जो समाज में एक आदर्श पैदा करते हैं, वो नाम को कोई मिटा नहीं सकता। ये हमारी नेचुरल समाज से जो उपलब्धि होती है निस्वार्थ भाव से, इसको कौन तोड़ सकता है। इस प्रकार अन्य कई बातें जो हम लोगों ने आज सुनी, मैं यही कहूंगी कि इन सबको अपने जीवन में हम उतारे। एक दूसरे को सहयोग देना, हम सब एक परिवार है और परिवार में वैरायटी अच्छी होती है, एक गुलदस्ता हो वैरायटी फूल होते हैं अच्छे लगते हैं, वृक्ष में वैरायटी होती है अच्छी लगती है, ड्रामा में अगर सब कोई राजा का ही पार्ट प्ले करें तो ड्रामा ही नहीं होगा। तो ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है, हमें एक दूसरे के सहयोगी रहना। आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति में क्या फर्क है, आपको वो कहानी याद होगी इंद्र जी की, जिन्होंने जिनके ऊपर ये कहा गया इंद्रदेव आप हमेशा देवताओं का साथ देते हो, तो इंद्रदेव ने कहा ऐसी बात तो नहीं है, चलो मैं आप लोगों को निमंत्रण देता हूं भोजन पर और सबसे पहले आप लोग आइए, असुर आप लोग आइए। वो आए, टेबल लगाया गया और उनके हाथ पे यहाँ पे एक संटी हम लोग बोलते हैं एक वो बांध दी गई, वो हाथ मुड़ नहीं सकता था, बांध दी गई, टेबल लगा है, भोजन सामने है, असुर आए वे भोजन करो, उनको बहुत गुस्सा आया कि हाथ हमारे बांध दिए और कहते भोजन का, हम भोजन कैसे करें, हाथ तो मुड़ नहीं सकता, बहुत भला बुरा है तुमने आज फिर से वही काम किया। उसके बाद उन्होंने देवताओं को बुलाया, देवताएं आए तो देवताएं उनका भी ऐसे ही टेबल ऐसी थाली ऐसे ही संटी बांधी गई, देवताएं बैठे बड़े प्रेम से, एक दूसरे जो सामने बैठा था अपनी थाली से उठा के उसको दिया, उन्होंने अपनी थाली से उनको खिलाया, भरपूर भोजन। ये है दैवी प्रवृत्ति, देवता देने वाले, हम दैवी कुल के हैं, भारत देवताओं की भूमि है, हम दैवी कुल के हैं, हमें अपने वो दैवी संस्कारों को इमर्ज करना है। ठीक है, अगर मिल करके करेंगे तो अब आप कहेंगे मेरे अकेले करने से क्या होगा, आपको एक साइंटिफिक रिसर्च बताते हैं, मेरे अकेले करने से बहुत कुछ हो सकता है। एक बार एक आइलैंड था, उस आइलैंड पर टापू, उस टापू पर बंदर एक छोर पे थे, दूसरे छोर पे दूसरे सेट था बंदरों का। दो साइंटिस्ट थे रूपर्ट और शेलरेक जो कम्युनिकेशन पर रिसर्च कर रहे थे। तो बंदर जो थे वो रोज आलू खाते थे, लेकिन कच्चे आलू होते थे, मिट्टी वाले ऐसे ही खाते थे। दोनों तरफ ऐसे चल रहा था। एक दिन एक बंदर के बच्चे के हाथ से आलू पानी में गिर गया, तो बंदर तो लालची होता है ना, तो उसने तुरंत उठाया। मिट्टी धुल गई थी, बच्चे ने जब आलू खाया तो उसको बड़ा स्वादिष्ट लगा, रोज मिट्टी वाला आज तो विदाउट उसके। उसने अपनी माँ को खिलाया, माँ को अच्छा लगा, माँ ने भी डाला और ऐसे खाया। तो सारे बंदर उस छोर के आलू धो करके खाना सीख गए। कोई बड़ी बात नहीं है, बंदर नकलची जानवर है। आश्चर्य की बात ये थी, रूपर्ट शेलरिक को कहता है, शेलरिक रूपर्ट को कहता है कि रूपर्ट मेरे तरफ एक आश्चर्यजनक बात हो रही है कि बंदर जो है वो आलू धो के खा रहे हैं। अब यहां से कोई बंदर वहां नहीं गया, कोई बंदर नहीं गया, परंतु वहां कैसे खाना शुरू हुआ, इसको कहते हैं क्वांटम लेवल तक जब कोई बात पहुंच जाती है तो वो एक्सप्लोड होकर के सारे उसमें फैल जाती है। इसी रीति से यहां इन्होंने खाया सबने, और वो वाइब्रेशंस उधर पहुंच जाते हैं। आप क्यों भूल रहे हैं, दो दिन पहले हम सबने सुना पढ़ा अखबार में कि एक शेरनी ने एक मनुष्य को अपने उसमें पंजों दबोच के रखा, और उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, वो डर के मारे, लेकिन उसका प्यार से थपथपाता रहा उसको, शेरनी ने कुछ नहीं कहा। वाइब्रेशंस, एंड्रोक्लीस जिसको शेर के कटघरे में डाल दिया गया सजा के रूप से, एंड्रोक्लीस समझ गया आज मेरी मौत है। शेर आता है, उसके पंजों से खून निकल रहा होता है, आता है एंड्रोक्लीस, उसके कांटे साफ करता है, उसको पानी पिलाता है, थपथपाता है। वही शेर जो भूखा प्यासा एंड्रोक्लीस को छोड़ता नहीं, एंड्रोक्लीस का रक्षक बन गया। कहानी है, वास्तविकता है, इतिहास। मैं मानती हूं आज की डेट में हमें अंधेरा अधिक नजर आ रहा है, लेकिन प्यारे भाई बहनों, एक छोटा सा दीपक उजियारा करने में देरी नहीं करता। हम वो दीपक बन करके यहां से जाएं तो ये भारत हमारा बन जाए। ओम शांति,
ओम शांति। आदरणीय आशा दीदी जी ने हमें हमारे इतिहास के महान नेताओं की रियल स्टोरीज भी बताई, कैसे अध्यात्म की मूल्यों की शक्ति ने हमारे देश को यहाँ तक लाया, और हमारे भविष्य दैवी संस्कृति कैसी होगी, और कैसे भारत हमारा फिर से स्वर्णिम दुनिया बनेगा, देवी और देवताओं का राज्य, उससे भी हमें अवगत कराया, और उसकी शुरुआत कैसे हमें करनी है उसकी भी हमें ना दिशा दी कि कैसे उन मूल्यों को अगर हम अपने जीवन में धारण करें, अभ्यास करें, अपने वाइब्रेशंस को अपने उस लेवल तक पहुंचाएं जो सारे विश्व में फैलेंगे, क्योंकि विचार ये विराट रंग मंच है, और इस मंच पर हमारे विचारों का रंग चढ़ता है, तो हम जैसे विचार करेंगे ये रंग मंच पर वैसा रंग होगा। तो हम अपने विचारों की श्रेष्ठता, शुद्धता और सकारात्मकता से आइए सभी मिलकर के पुनः विश्व में शांति, प्रेम, एकता और सद्भावना एम्पति का राज्य पुनः स्थापित करें इन मूल्यों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का और हम सभी श्रोताओं का और उसके साथ साथ आज के हमारे प्रभावशाली वक्ताओं के एक एक वाक्यों का ना जो उन्होंने हमें इंस्पिरेशन दिए हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि हमारे माननीय अतिथि जो मंच पर आसीन हैं उन सभी को ईश्वरीय सौगात दीदी द्वारा दिलवाएंगे। सर्वप्रथम ईश्वरीय सौगात दी जा रही है हमारे मुख्य अतिथि श्री सुबोध उनियाल जी को। परमात्मा स्मृति का सुंदर चिन्ह अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए आप इसे अपना ध्यान केंद्रित कर शांति स्थापित करने में सहयोग लेंगे। श्री विनोद उनियाल जी को ईश्वरीय सौगात दी जा रही है। श्री डूंगर राम केदर जी को ईश्वरीय सौगात। श्री रविशंकर जी को दीदी जी द्वारा ईश्वरीय सौगात एवं प्रसाद दिया जा रहा। और श्रीमती सुमति मलिक, आप सभी ने आज आकर के इस सुंदर सभा में अपने सुंदर विचारों को प्रस्तुत किया, उसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट के साइलेंस के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम संपन्न करेंगे और इस साइलेंस में हर एक अपने मन में अपने लिए एक सुंदर दृढ़ संकल्प धारण करेंगे और अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन करने का यह संकल्प को न दृढ़ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज शाम के कार्यक्रम को भी अनाउंस करना चाहेंगे। नेक्स्ट कार्यक्रम यहीं पर शाम को 4:30 बजे एक बहुत सुंदर विषय पर हम अपना वक्तव्य सुनेंगे यहाँ पर। तो 4:30 बजे पुनः हम सभी यहीं पर एकत्रित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।